पेज नंबर 60 परवर्ती अपभ्रंश और उसमें हिंदी के बीच परिनिष्ठित अपभ्रंश में देशी बोलियों का मिश्रण। परिनिष्ठित अपभ्रंश में आधुनिक देशी बोलियों के मिश्रण का आभास हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण के रचना काल 1142 ई. से ही मिलने लगता है। उनकी देशीनामला में भी ऐसे अनेक देशी शब्दों का संग्रह है जो प्राकृत ही नहीं बल्कि अपभ्रंश साहित्य में भी अप्रयुक्त हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग बोलचाल में ही होता रहा होगा, ये बात सहज ही सोची जा सकती है। इसके अतिरिक्त काव्यानुशासन में हेमचंद्र ने स्वयं ही शिष्ट अपभ्रंश से भिन्न ग्राम्य अपभ्रंश का अस्तित्व स्वीकार किया है। स्पष्ट है कि यह ग्राम्य अपभ्रंश सामान्य लोकजीवन मन व्यवहारित होने वाली परिनिष्ठित अपभ्रंश का ही कोई न कोई रूप थी जिसमें संभवतः स्थानीय बोलियों का मिश्रण हो गया होगा। इस तथ्य की पुष्टि में विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि हेमचंद्र ने जिस अपभ्रंश का व्याकरण लिखा वह उस समय बोलचाल से उठ चुकी थी। इस कथन के समर्थन में युक्ति दी गई है कि यदि यह भाषा उस समय जीवित रही होती तो उसका इतना सोदाहरण और विस्तृत व्याकरण लिखने की कोई जरूरत न होती। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भाषा के व्याकरण की सांकेतिक और संक्षिप्त रूपरेखा से ही उसका जीवित रहना सिद्ध नहीं हो जाता। यदि ऐसा होता तो हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण में अपभ्रंश की तुलना में प्रकृति का संक्षिप्त व्याकरण देखकर प्राकृत को ही उनके युग की जीवित भाषा मानना पड़ता, जो अनैतिहासिक होता। ऐसे निराधार अनुमान की अपेक्षा गुलेरी जी का ये कथन अधिक तथ्यपूर्ण प्रतीत होता है कि यदि हेमचंद्र पूरे उदाहरण न देता तो पढ़ने वाले जिनकी संस्कृत और प्राकृत आकर ग्रंथों तक तो पहुँच थी किन्तु जो भाषा साहित्य से स्वभावतः नाक चढ़ाते थे उसके नियमों को न समझते 12 वस्तुतः हेमचंद्र ने अपना व्याकरण पंडितों के लिए लिखा था, जन साधारण के लिए नहीं। फिर भी यह निश्चित है कि हेमचंद्र के समय तक साहित्य में अपभ्रंश का एक रूप स्थिर और परिनिष्ठित हो चुका था। यदि उसकी स्थिरता में कुछ कमी रह भी गई थी तो हेमचंद्र ने व्याकरण लिखकर वह कमी पूरी कर दी। अपभ्रंश के परवर्ती कवियों में से पंडितों ने प्रायः साहित्यिक अपभ्रंश को सामने रखकर किताबी भाषा 1. तस्सीतोरी इंडियन एंटिक्वेरी 1914 पुरानी पश्चिमी राजस्थानी 1000 दिवेतिया गुजराती लैंग्वेज प्री 025 2. पुरानी हिंदी प्री 130 पेज नंबर 61 में रचना की। ऐसे प्रयत्न हेमचंद्र के 300 वर्ष बाद तक होते रहे। परवर्ती अपभ्रंश के वास्तविक स्वरूप का पता पाने के लिए ये काव्य विशेष पंडितों के काम के नहीं, लेकिन हेमचंद्र के बाद अपभ्रंश काव्य की एक और भी धारा प्रवाहित रही जिसमें परिनिष्ठित अपभ्रंश के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा लोक प्रचलित भाषा का उपयोग होता था। इस मिश्रित भाषा में रचे हुए ग्रंथ काव्य की दृष्टि से तो उत्कृष्ट हैं ही, आधुनिक देशी भाषाओं के आरंभिक रूप के अध्ययन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय आर्य भाषा के इतिहास अथवा विकास की दृष्टि से परवर्ती अपभ्रंश का ये देशीय मिश्रित साहित्य विशेष महत्व का है और सच्चे अर्थों में परवर्ती अपभ्रंश वही है। परवर्ती अपभ्रंश में देश भेद भाषा में प्रसार के साथ स्थान भेद का आना स्वाभाविक है और यही घटना अपभ्रंश में भी घटी। अब अपभ्रंश सिंध के मुल्तान से लेकर बंगाल के समुद्र तट तक और कन्नौज से लेकर मानिखे तक फैल गई तो इसमें स्थानीय विशेषताओं का उभार आवश्यक था। पूर्वी और पश्चिमी का भेद तो अपभ्रंश में हेमचंद्र से पहले भी था, लेकिन परवर्ती अपभ्रंश में ये भेद और भी गहरा हुआ। ये देश भेद धीरे धीरे इतना बड़ा कि 13वीं शताब्दी तक जाते जाते अपभ्रंश के सहारे ही पूर्व और पश्चिम के देशों ने अपनी बोलियों का स्वतंत्र रूप प्रकट कर दिया। परवर्ती अपभ्रंश की यह सबसे बड़ी विशेषता है। परवर्ती अपभ्रंश का पश्चिमी साहित्य देश भेद के अनुसार देने से पश्चिमी प्रदेशों से परवर्ती अपभ्रंश साहित्य की सामग्री थोड़े बहुत अंतर के साथ कालक्रम से इस प्रकार है। एक, संदेश रासक 12वीं सदी ईस्वी का पूर्वार्ध अब्दुल रहमान। दो, बाहुबली रास 1184 ई. शालिभद्र सूरी। तीन, थूलेभद्द फागु 1200 ई. जिन पद्म सूरी। चार, नेमिनाथ चौपई 1200 ई. विनयचंद सूरी। पांच, समर रास 1314 ई. अम्बदेव सूरी। छह, नेमिनाथ फागु 1314 ई. राजशेखर सूरी। सात, शालिभद्र कक्का 1300 ई. अज्ञात। दो एक, भारतीय विद्या वर्ष 2 अंक 1 में प्रकाशित। दो, तीसरी से सातवीं तक की पुस्तकें प्राचीन गुर्जर काव्य संग्रह के अंतर्गत संग्रहित हैं। पेज नंबर 62। प्राकृत पेंगलम 12वीं से 15वीं सदी में उद्धृत बब्ब जजजल विद्याधर हरिब्रह्म तथा कुछ अन्य अज्ञात कवियों की रचनाएं जिनका रचना स्थान मुख्यतः मध्य देश है। 9. षडावश्यक बालवबोध 1354 ई. तरुणप्रभ सूरी गुजरात। इनके अतिरिक्त और भी अनेक पद्य तथा गद्य खंड बिखरे हुए हैं। पश्चिमी प्रदेश के परवर्ती अपभ्रंश की विशेषता। पश्चिमी प्रदेशों के परवर्ती अपभ्रंश साहित्य की इन बिखरी हुई सामग्रियों का भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण अपेक्षित है। इस सामग्री में भी देश काल भेद का आभास मिलता है। संदेश रासक की भाषा से प्राकृत पेंगलम में उद्धृत पद्यों की भाषा निश्चित रूप से विकास की सूचना देती है। इसके साथ ही उसमें स्थानीय विशिष्टता भी है। प्राकृत पेंगलम के पूर्वोक्त पद्यों की भाषा में पुरानी ब्रजभाषा के बीज अधिक हैं, जबकि संदेश रासक की भाषा में ये बीज अपेक्षाकृत बहुत कम हैं। तुलना के लिए यहां दोनों काव्यों से क्रमशः एक एक छप्पे लिए जा सकते हैं। वन की तही देसी हु फुरई जुन निसी निम्मल चंद अह कलरउ न कुनंती हंस फलसेवी रविंद अह पायउ हु पद कोई कावालिय पुन रायन अह पंचउ नहु कुनी कोई कावालिय भाइन महमहि अहव पचचूसी हु ओस्सियु घनु कुसुम्भरु अह मुनियु पहियु अंसियु पियु सरई समिजु न सरई धरु। संदेश रासक 183-2 पिधट दिद सना वाह उपर पक्खर दई बंधु समदि रणधसउ सामी हमीर वहुला उज्जल गह पह भमहु खगरियु सीसही दारु पक्खर पक्खर ठैली पैली पवर अपफालउ हमीर कज जज जल भनी कोहान मोह मह जलऊ सुल्तान सीस करवाल दई तेजजी कलेवर दिया चलऊ। प्राकृत पेंगलमा 180। इसी तरह यदि 14वीं सदी ईस्वी के षडावश्यक बालवबोध को इनकी तुलना में रखा जाए तो भाषा के विकास का एक और सोपान प्रकट होगा। अनंत गुण भवन पूजपुनि परिमिति जितिन करिनी एह अर्थ विषयी काय एक कहियई जर्नल ऑफ दी U0P0 हिस्टोरिकल सोसाइटी वर्ष 22 खंड 1-2 1949 ई. में प्रकाशित श्री अगरचंद नाहटा का निबंध आचार्य प्रवर तरुण प्रभ सूरी। पेज नंबर 63। दशार्णपुरु इसई नामी नगरु तिहां दशार्ण भद्रु नामी राजा तिहां दशार्णु इसई नाम गिरी अनेरई दिनी श्री महावीरु तिहां समोसरित उद्यान पालकी श्री महावीर समागमनी करी दगार्ण भद्रु राव बहाबियु अति हर्ष प्रकर्ष बसई तव राव सिंहासन हुंतउ उठियु श्री महावीर सानमहु सप्त आठ पग जाए उत्तरासंगु करी तिहाई जी धिकउ विधि सुन बांदी सिंहासनी बैसी उद्यान पालक रहई पारितोषिकु दानु दे करी चितमाही चीतवई प्रभातितिम किमई श्री महावीरु वांदे सुजिम अनेरह किनेही न वांदियुन। इसव ध्यायती हुंतई नगर शोभाक्रावी प्रभाव समझ स्फारु श्रृंगारू करी अतिसार अलंकार पहरी सर्व समृद्धि सहेतु सामंत मंत्री मंडलेश्वर परिवरितु सांतः पुरु हस्तिस्कंद समारू चौरंग कटक समेतु आपनई लक्ष्मी मदिक्री त्रिभुवनु त्रिंजिम मांतऊ हुंतऊ श्री महावीर देव वांडिव चालियु पदी पदी गीत नृत्य नाटक कौतुक करवतऊ कनकदान रूप पदान वस्त्रादि दान दियतऊ हुतऊ दशार्णभूधर कन्ही आवियु गंध सिंदूर हुंतऊ उतारी करी समव सरण माही त्रिन्ही प्रदक्षिणा देकरी श्री महावीर प्रणमीकरी यथास्थानी वैठऊ अहो दशार्ण भद्र रह विश्व पूज्य पूजन विषय केवऊ रागु अहई पर सुरागु रिद्धि मददूषणु कनिकरी कलुषितु सर्व सुरासुर नरनायक जई आपनी सर्व समृद्धि विस्तारी करी तीर्थंकर रहई समकालु पूजई तथापि ही सर्व प्रकर्षिकरी पूजितु न होई अमान गुनु भगवंतु पूजा सर्व प्रकर्ष कृतई परिमिति एति उपर्युक्त गद्यांश षडावश्यक बालवबोध में से दशार्णभद्र कथा से उद्धृत किया गया है। इसमें शब्दकोश की दृष्टि से जो सबसे नई बात है वह है तत्सम शब्दों का प्रयोग। अपभ्रंश के बाद आधुनिक आर्य भाषाओं के आरंभ का ये पहला संकेत है। इस गद्यांश की दूसरी नवीनता है परसर्गों का अत्यधिक प्रयोग तथा प्राचीन कारक विभक्तियों का प्रायः अप्रयोग। ये प्रवृत्ति इतनी प्रबल है कि वाक्यों में क्रम तथा नैरंतर्य बनाए रखने के लिए उपयुक्त परसर्गों के अभाव में सर्वनामों का प्रयोग किया गया है, जैसे पहले ही वाक्य में एह अर्थ विषयी और दूसरे वाक्य में दशार्णपुरु इसई नाम नगरु। डॉक्टर शून्य सुनीति कुमार चाटुज्या ने वर्ण रत्नाकर के गद्य में भी इसी तरह के पेरिफ्रेसिस को लक्षित किया है। निश्चित रूप से यह परवर्ती अपभ्रंश के वाक्य विन्यास की अपनी विशेषता है जिससे आधुनिक आर्य भाषाओं के आरंभिक रूप का पता चलता है। संदेश रासक की भाषा का यह अगला सोपान निश्चित रूप जा सकता है। दो माना परवर्ती अपभ्रंश में भी क्रमिक विकास के इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए यह विचारणीय है कि वे कौन से मुख्य उपाय थे जिनके द्वारा परवर्ती अपभ्रंश ने अपने एक श्री नाहटा के उक्त निबंध से उद्धृत। दो वर्ण रत्नाकर अंग्रेजी भूमिका 38 पेज नंबर 64 को पूर्ववर्ती प्रभाव से मुक्त किया तथा पश्चिमी प्रदेश की आधुनिक बोलियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ध्वनि संबंधी प्रवृत्तियां परवर्ती काल की पश्चिमी अपभ्रंश ने परंपरा प्राप्त शब्द समूह तो श्रुति सुख तथा उच्चारण के योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित मुख्य उपायों से काम लिया। एक प्राकृतों के संयुक्त व्यंजनों में सरलता लाने के लिए कभी क्षतिपूरक दीर्घीकरण जैसे निसासा लेस देन निस्सास इक्वल्स निःश्वास निसरी लेस देन निस्सरी equals nehsarati, visari less than visari, equals vismarati, usas less than usas, equals uchvas, adi, और कभी बिना क्षतिपूरक दीर्घीकरण के ही व्यंजन द्वित्व को तोड़ना जैसे कन्यार आठ कन्यार equals कर्णिकार वखानी वखानी equals व्याख्यान शून्य कपूर आठ कपूर equals कर्पूर चूडलऊ आठ चूडलऊ आलस आठ आल्स इक्वल्स आलस्य आदि। ये दोनों प्रवृत्तियां परिनिष्ठित अपभ्रंश में भी मौजूद थीं, किंतु परवर्ती अपभ्रंश में बहुत बढ़ गईं। दो मध्य क ग च ज त द प य व आदि व्यंजनों के लोप होने से प्रायः एकाधिक स्वर साथ साथ सुरक्षित रखकर जहां विवृति या विच्छेद हाइटस उत्पन्न कर देने थे वहां सधी समीकरण प्रक्रिया का प्रयोग जैसे सहार आठ सहार इक्वल्स सहकार सुनार आठ सुअनार स्वर्णकार अंधार आठ अंधार इक्वल्स अंधकार मोर आठ मयूर इक्वल्स मयूर। संप्रयुक्त स्वरों को संयुक्त करने की इस प्रवृत्ति के साथ ही संकोचन की प्रवृत्ति धतनी प्रबल हो उठी थी कि अंत में आने वाले स्वर भी पूर्ववर्ती स्वर के साथ संयुक्त होने लगे। क्रियापदों में ये प्रवृत्ति विशेष काम कर रही थी, जैसे कीजे आठ किजई, करीजे करिजई, रह आठ रही, कहीजे आठ कहिजई आदि। तीन, कुछ विद्वानों ने कारक रूपों में निरनुनासिकता को भी अपभ्रंश की प्रादेशिक विशेषता न मानकर परवर्ती विकास माना है, जैसे संदेश रासिक में तृतीय और सप्तमी में ही अंत वाले रूपों की जगह ही अंत का प्रयोग, इसी तरह षष्ठी बहुवचन में ह की जगह ह और नपुंसक लिंग के प्रथमा द्वितीय एकवचन में ई की जगह ई आदि। चार, अनुनासिक व्यंजन के साथ उसके बाद आने वाले व्यंजन का समीकरण होना भी परवर्ती अपभ्रंश की प्रवृत्ति कही गई है। दो, जैसे संरेह आठ संदेशक न जोड़ द संदेश रासक व्याकरण 77 वही 35-51 पेज नंबर 65 सामोर आठ शामपुर म जोड़ ब 5 संदेश रासक की भाषा पर विचार करते हुए श्री भायानी ने मध्य ब के लोप को परवर्ती अपभ्रंश की ऐसी प्रवृत्ति माना है जो ब्रजभाषा की विशेषताओं में से एक है। मन्नाए इक्वल्स मन्नावी, मन्नाएवी इक्वल्स मन्नावेवी, पाए इक्वल्स पाव्य, जीव इक्वल्स जीव, संताव इक्वल्स सतावु। रूप निर्माण संबंधी विशेषताएं। परवर्ती अपभ्रंश तद्भव शब्दों के ध्वनि परिवर्तन करने में उतनी सक्रिय नहीं रही जितनी अपभ्रंश के स्थिर और संश्लिष्ट पदों को और भी विश्लिष्ट करने में। परवर्ती अपभ्रंश में जो आधुनिक भाषाओं के बीज मिलते हैं वे बहुत कुछ इसी रूप निर्माण के क्षेत्र में। एक, लगभग सभी कारकों में धड़ल्ले के साथ निर्विभक्तिक पदों का प्रयोग करना परवर्ती अपभ्रंश की ऐसी प्रवृत्ति है जो पुरानी राजधानी ब्रज और गुजराती सभी भाषाओं में बहुतायत से मिलती है। हेमचंद्र के समय ये प्रवृत्ति इतनी प्रबल न थी। उन्होंने प्रथमा द्वितीय और षष्ठी केवल तीन विभक्तियों में लोप का निर्देश किया था। हेमचंद्र के उद्धरणों में भी इस तरह के उदाहरण अधिक नहीं हैं। लेकिन संदेश रासक प्राकृत पैदग्लिम तक आते आते ऐसे निर्विभक्तिक पदों की लड़ी लग जाती है। दो, विभक्ति लोप के साथ ही अधिक परसर्गों का प्रयोग भी बढ़ने लगा। हेमचंद्र व्याकरण में जहां मुश्किल से केही रेसी तनेन होंतो केर केर मझी आदि गिने चुने परसग मिलते हैं, वहां संदेश रासक में एक साथ सतही सम सरिसु हुंतव दिथ्यो रेस लग्नी तनी मही आदि विविध परसग दिखाई पड़ने लगे। पश्चिम के दूसरे ग्रंथों में भी इन परसर्गों के थोड़े बहुत परिवर्तित रूप तथा कुछ अन्य नए परसग भी मिलते हैं। तीन, श्री भायानी का सुझाव है कि संदेश रासक में संजीवीय और अल्हावियर आदि शब्दों की य इक्वल्स कर प्रत्यय हिंदी के लुटेरा चितेरा आदि शब्दों की एरा प्रत्यय की जननी है। दो, चार, पूर्वकालिक क्रिया के लिए परिनिष्ठित अपभ्रंश में जहां इवि अवि वि ई आदि प्रत्यय आते थे वहां परवर्ती अपभ्रंश में संयुक्त पूर्वकालिक रूपों का प्रचलन हो गया, जैसे देहेवी करी। पूर्ववर्ती अपभ्रंश में केवल देहेवी से ही काम चल जाता। स्पष्ट है कि आगे हिंदी में ऐसे ही दुहरे पूर्वकालिक रूपों का ही प्रचलन हुआ जिनमें मूल क्रिया में पूर्वकालिक प्रत्यय लुप्त करने के बाद कार इक्वल्स क्रे। एक, संदेश रासक व्याकरण 4-6-5-1-2 वही 33 C पेज नंबर 66 का भी वैसा ही पूर्वकालिक रूप जोड़कर काम चलाया जाता है। पांच, क्रियापदों के क्षेत्र में परवर्ती अपभ्रंश ने सबसे बड़ा कार्य किया संयुक्त काल और संयुक्त क्रियाओं का बहुल निर्माण। संयुक्त काल के निर्माण में प्रायः भू आस कृ के सामान्य वर्तमान वाले रूपों के घिसे हुए रूप सहायक क्रिया के रूप में व्यवहारित होते थे तथा उससे पूर्व मूल क्रिया कभी भूत कृदंत होती और कभी वर्तमान कृदंत का कुछ घिसा हुआ रूप जैसे करत अच्छी। संयुक्त क्रिया में प्रायः सिद्धावस्थापन्नम क्रिया इन्फाइनाइट वर्ब जो समूह का प्रथम अंश होती है मुख्यतः या तो पूर्वकालिक होती है या क्रियार्थक तुमुन्नंत या शत्रु कृतज और साध्यावस्थापन क्रिया फाइनाइट वर्ब प्रायः काल निर्माण करती है जैसे संदेश रासक में निसुविनु रही 18 म तक खरु वक्खरु हरि गऊ 95 घ असिस तरु झड़ी करी गए 192 घ आदि में सिद्धावस्थापन क्रियाएं प्रायः पूर्वकालिक हैं और कहीं न सकद 105 का में कही क्रियार्थक है। रूप और अर्थ की दृष्टि से संयुक्त क्रियाओं की विविधता अन्यत्र भी दिखाई पड़ती है। पूर्वी प्रदेशों का परवर्ती अपभ्रंश साहित्य पश्चिमी प्रदेशों की अपेक्षा पूर्वी प्रदेशों का परवर्ती अपभ्रंश साहित्य मात्रा में अल्प होता हुआ भी आधुनिक देशी भाषाओं के आरंभ की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। 12वीं शताब्दी में काशी के दामोदर पंडित द्वारा लिखा हुआ उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्राप्त हुआ है जो संभवतः गाहरवाल राजकुमारों को स्थानीय देशभाषा के माध्यम से संस्कृत पढ़ाने के उद्देश्य से लिखा गया था। यत्र तत्र उसकी भाषा जो फुटकल नमूने सामने हैं जैसे पढ़ब लिखब अभ्यासव जैसे भविष्यत कृदंत की क्रियाएं, उनसे पता चलता है कि पूरब की बोलियों का प्राचीन रूप उसमें अच्छी तरह सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्णरत्नाकर 14वीं सदी का पूर्वार्ध तक विद्यापति ठाकुर की कीर्तिलता 14वीं सदी का उत्तरार्ध दो ऐसी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं जिनका संबंध हिंदी भाषा भाषी प्रदेश की सुदूर पूर्व की बोली से है। विद्यापति की एक और ऐसी ही पुस्तक कीर्तिपताका का भी विवरण मिलता एक वही 681 दो मशून्य हरप्रसाद शास्त्री नेपाल दरबार लाइब्रेरी के ताड़पत्र तथा अन्य हस्तलिखित ग्रंथों का सूचीपत्र 1905 पेज नंबर 67। शास्त्री जी ने कीर्तिपताका से एक अपभ्रंश छंद की उद्धृत किया है जो इस प्रकार है पंड्यमंडले बदगुने भीषमकार मोहन वाणी महुर महै ग्रस पियूस वंसवनेन प्राकृत पैंगलम के उदाहरणों में कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जिन पर पूर्वी बोली की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है जैसे एक करुणा पले मेछह वेयले सोदेव पराय तुम्हवरा 570 दो यही मन इछल कहून 3 वित्तक पुरल मंदरा 4 मही चलई मुअल जीवी उठय 5 सोहर तोहर सकत सना श्री अगरचंद नाहटा ने वीरगाथा काल का जैन साहित्य निबंध में 14वीं सदी की कुछ गद्यांशों का उद्धरण दिया है जिनमें से एक अंश में पूर्वी प्रदेश की बोली का पुराना रूप सुरक्षित है। 2 अथ पूर्वी नायिका का बोलिया सुनहुगे रे भैया इथु जुगी जानी वद धीरे निखुरे मोरी बहिनी पुनी पुनी मोर देसु किच्छु मोर देश की बात जानसी जेही देश ऐसे मानुस कैसे एक धीरे धीरे विवेकिए परम दाय के मौन मरार मल तुम्ह कतुके जान तुके प्राण बवाकियान अम्हा तुम्हा बड़ा अंतरुआही कैसु अंतरु तुम्हके मानस तरी मोटे उपरी मोटे विची छोटे अत अम्ह के मानुस नान्हे विची पुनु कर ससार विडु आही ऐस दीसतु हाई जैसा पूनम का चांद अहकोदव के चावर सायही गीत गायही सुठी नहके वनिये वसही कैसे बनिए आचचच्चा उद्धरण खोज से इस तरह के और भी गद्य तथा पद्य मिल सकते हैं। पूर्वी प्रदेश के परवर्ती अपभ्रंश की विशेषता एक 2 अपभ्रंश में आधुनिक देशी बोलियों का जितना प्रगाढ़ मिश्रण पूर्वी प्रदेशों में दिखाई पड़ता है उतना पश्चिम में नहीं। पश्चिमी प्रदेश की साहित्यिक भाषा बहुत दिनों तक परिनिष्ठित अपभ्रंश से प्रभावित रही किंतु पूर्व के लिए वह शुरू से ही मात्र साहित्यिक भाषा होने के कारण स्थानीय बोली से अलग रही। फलतः पूरब में देशी बोलियों का उभार बहुत तेजी से हुआ। एक, पूरब की परवर्ती अपभ्रंश पश्चिम से जिस विषय में अत्यधिक विशिष्ट थी वह है शब्दकोश। परवर्ती काल की पूर्वी अपभ्रंश में जिस मात्रा में संस्कृत के तत्सम शब्दों को ग्रहण किया गया, पश्चिमी में उसका शतांश भी नहीं हुआ। एक और देखिए, बुद्धचरित की भूमिका, प्रशून्य 7-101 नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष 46, अंक 3, सम 1998-0, पेज नंबर 68। कीर्तिलता और वर्णरत नाकर तथा दूसरी ओर संदेश रासक से प्राकृत पैंगलम तक की रचनाओं से तुलना करने पर ये तथ्य प्रमाणित हो जाता है। इसी तरह इस्लाम के संपर्क से अरबी और फारसी शब्दों का ग्रहण भी पूर्वी अपभ्रंश में बहुत हुआ। उसकी तुलना में पश्चिमी अपभ्रंश में ये शब्द बहुत कम मिलते हैं। यह अवश्य है कि कीर्तिलता और वर्ण रत्नाकर ने अरबी और फारसी शब्दों को अपनी स्थानीय उच्चारण विधि के अनुकूल मोड़कर ग्रहण किया, जैसे तुर्क को तुलुक अथवा तुरुक, सुल्तान को सुरुतान, हजार को हजार, प्यास को प्याजू बनाकर अपनी बोलचाल में खपा लेने की कोशिश की गई। दो, संज्ञा शब्दों की रूप रचना के क्षेत्र में भी परवर्ती युग की पूर्वी अपभ्रंश ने पश्चिमी अपभ्रंश से विकास के अग्रिम चरण दिखलाए। पश्चिमी अपभ्रंश में विकारी कारकों ऑब्लिक केसेस के निर्माण में उतनी एकरूपता तथा स्थिरता नहीं आ सकी थी जितनी पूर्वी में आई। पश्चिमी अपभ्रंश में एकवचन और बहुवचन के अंतर को स्पष्ट करने वाले रूपों का प्रचलन प्रायः कम या नहीं था। पूर्वी अपभ्रंश में लगभग सभी कारकों के विकारी रूप बहुवचन में नहीं न अथवा न अंत वाले होते थे, जैसे प्रथमा मयूरन चरिते आच वर्ण रत्नाकर 21 का, द्वितीया दास गोंसायनी गहिय कीर्तिलता प्रशून्य 16, तृतीया गो बोली गमारन ही छाड़ प्रशून्य 36, वायसन ही कोलाहल करु वर्ण 29 खा, जुवते ही जलकेली आरहू 30 का, तब्बे मनतेह केयो प्रस्ताव कीर्ति 56। षष्ठी और सप्तमी बहुवचन के रूपों की यह विशेषता है कि नहीं न अंत वाले इन विकारी रूपों के बाद परसक भी प्रयुक्त होते थे, जैसे षष्ठी जुवते ही का उत्कंठा वर्ण 30 ख, वेश्या ही करो निवास कीर्ति 32, सप्तमी युवराजन ही मांझ परित्र कीर्ति 12। 3, निर्विभक्तिक अथवा लुप्तविभक्तिक पदों के बाद परसर्गों का प्रयोग करने में पूर्वी अपभ्रंश ने पश्चिमी की अपेक्षा अधिक साहस का परिचय दिया, यहां तक कि कीर्तिलता और वर्ण रत्नाकर की भाषा इसी परसर्ग बहुलता के कारण लगभग विश्लिष्ट भाषा की श्रेणी में आ गई। आगे परसर्ग प्रयोग के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। तृतीया जुआर सया वर्ण 38 का, मृत्यु सयों कलकल करेते आच वर्ण 41 का, मानिनी जीवन मान सयों कीर्ति 06, पेज नंबर 69। चतुर्थी साजन कारण वर्ण 47 ख, जुज देखे कारक कीर्ति 106, सामी काज संग्रे कीर्ति 84, एही आली गए लागी वर्ण 18 का, तबे मन कर तेसरा लागी कीर्ति 05, जनी अमृत का सरोवर सयों पंख उद्धारी आनल आच वर्ण 28 का, विंध्य सयों विधाता जे किनी कादल कीर्ति 28, वटिक न तेह छोट सुखपाखी तेह मोट वर्ण 76 ख, दुर्हुति आ वड वड रा कीति 46। षष्ठी के परसग कर का आदि की यह विशेषता है कि वह अपने से संबद्ध परवर्ती संज्ञा के लिंग वचन कारक के अनुसार रूप बदलता है, अर्थात षष्ठी परवर्ती का डिग्री स्वतंत्र शब्द की तरह लिंग वचन कारक में अपना रूप निर्माण करता है। जैसे तान्ही करी कुटिल कटाचता कीर्ति 036 और मध्यान्हे करी वेला कीर्ति 030 में करी का लिंग छटा और वेला के द्वारा निर्धारित हुआ है। इसी तरह परवर्ती संज्ञा के कारक का भी प्रभाव इस परसक पर पड़ता है, जैसे का जब संबद्ध संज्ञा तृतीया में हो आदित्य के भयानुकाइल अंधकार वर्ण 030 ख तान्ही के दांते आधातल सरल वृक्ष वही 50 का ख जब संबद्ध संज्ञा सप्तमी में हो श्वेत पंकज का दल ब्रह्म बैसल वर्ण 018 का सिंहासन का उप वर्ण 036 का नागरनही का मनगाड कीर्ति 036 अधम उत्तम का पारक कीर्ति 016 आनक तिलक आनका लाग कीर्ति 030। अंतिम दोनों उदाहरणों में संबद्ध संज्ञा अंतर्निहित हैं, जैसे आनक तिलक आनका भाल पर लाग ये भाव है। जन्ही के निर्माणे विश्वकर्महु भेल बड़ प्रास कीर्ति 032 घ जब संबद्ध संज्ञा भावलक्षण अथवा सती सप्तमी में हो तेतुली वेला मात्र मित्र महाजन के वोल्थ हृदय गिरिकद्रा निद्रान पित्री वैरी केशरी जागु कीर्ति 018 पेज नंबर 74। विभक्ति लोप होने तथा उनकी पूर्ति के लिए आवश्यक परसग न मिल सकने के कारण अन्वय के लिए जे से आदि सर्वनामों की सहायता द्वारा पेरिफ्रेसिस की गई, जैसे क विद्युलता क तरंग ते पथ दिश ज्ञान हो ई ते अच वर्ण 031 का ख मदे जे उन्मत हाथी तन्ही के जे दांते आघातल सरल वृक्ष तासयों च्युत भेल जे निर्यास तकर परिमल से कैसन अश्लु वर्ण 050 क ग पदातिक धर्मम इन्हीं वॉट कादव भद गौ वर्ण 049 का 5। सर्वनाम के रूप भी घिसकर अपभ्रंश की अपेक्षा आधुनिक बोलियों के अधिक नजदीक आ गए, विशेषतः कीर्तिलता में, जैसे मोर तोर मोके तोके मोही तोही आदि। अन्य पुरुष के लिए अपभ्रंश में जहां से ते आदि का प्रचलन था, पूर्वी अपभ्रंश में धड़ल्ले से ओई आठ आदस हिमचंद्र वाले रूप चल पड़े, जैसे न नहीं नर समुद्र ओ कीर्ति 031 एक ओहु शास दरबार सैल महिमंडल उपपर कीर्ति 050 6। क्रियापद के प्रयोग में क सामान्य वर्तमान काल लट लकार के तिंत के रूप स्वर संकोचन अथवा संधि के द्वारा आधुनिक हो गए, जैसे करी अजोड़ी करे अंग न राखे राव कीर्ति 076। किंतु संकोचन या संधि की इस प्रवृत्ति का कीर्तिलता में आरंभ ही दिखाई पड़ता है। ज्ञान होता है कि उस समय तक इस प्रवृत्ति का पूरा प्रसार नहीं हो सका था। ख वर्णरत्नाकर और कीर्तिलता तक आते आते भू अस आदि सहायक क्रियाओं के रूप काफी घिसकर आधुनिक हो उठे थे। अच्छी छ छल आदि मैथिली बंगला के आधुनिक रूपों का व्यापक प्रचलन उसी समय से आरंभ हो गया था। ग भूतकाल बनाने की कृदंत प्रत्यय अल जो आधुनिक मागधी बोलियों भोजपुरिया मगही मैथिली और बंगला की अपनी विशेषता है, परवर्ती काल की पूर्वी अपभ्रंश से ही व्यापक हो गई थी। सिद्धों की रचनाओं में इसका आरंभ मात्र हो सका था, लेकिन व्यापक प्रसार तो कीर्तिलता और वर्णरत्नाकर में ही हुआ। ब्रह्म पुष्पोदेश चलल वर्ण 029 ख काहु संबल देल थोल कीर्ति 030 काहु पाती भेल पैठी कीर्ति 030 जनी अद्य पर्यंत विश्वकर्मा एही कार्य छल कीर्ति 50 वर्णरत्नाकर अंग्रेजी भूमिका 38 पेज नंबर 71। घ कृदतज सिद्धावस्था क्रिया जोड़ तिंतज साध्यावस्थापन क्रिया की विधि से विविध संयुक्त काल बनाने की प्रवृत्ति वर्णरत्नाकर से ही आरंभ हो गई थी, जिसका पर्याप्त विकास आधुनिक बोलियों में हुआ। जैसे होयते अच, वर्ण शून्य 13 का, करिते अच, 37 खा, भेल अच, भेल छथी, 52 खा, भय गेल छथी, चलत भुव, 46 खा। अग, संयुक्त, क्रिया निर्माण की जो प्रक्रिया परिनिष्ठित अपभ्रंश में आरंभ हुई थी, पूर्वी प्रदेश की परवर्ती अपभ्रंश ने उसमें और भी विविधता तथा व्यापकता दिखाए। जैसे, हकारी हलुआ, वर्ण शून्य 44 ख, सबके पाटा देल, 76 ख, भय गेला, 18 क, आभव, 30, भई गौ, 33, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण और मध्यदेशीय अपभ्रंश। परवर्ती काल के पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंशों के बीच एक मध्यदेशी अपभ्रंश का भी अस्तित्व प्रमाणित होता है। 12वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध में काशी के दामोदर पंडित द्वारा रचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण में पाए जाने वाली देश भाषा यही मध्यदेशीय अपभ्रंश है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की अपभ्रंश वर्ण रत्नाकर कीर्तिलता और चर्यापदों के अपभ्रंश से बहुत कुछ भिन्न है। उसमें मागधी के तत्व उतने नहीं हैं जितने की अवधि के बीज हैं। यहां तक कि डॉक्टर शून्य सुनीति कुमार चैटर्जी ने उक्ति व्यक्ति की देश भाषा को प्राचीन कोसली कहा है। इस प्रकार उक्ति व्यक्ति की भाषा को परवर्ती युग के पूर्वी अपभ्रंश से भिन्न मध्यदेशीय अपभ्रंश के रूप में विचार करना अधिक युक्ति संगत प्रतीत होता है। उक्ति व्यक्ति का महत्व विशेष रूप से इसी बात में है कि उसके द्वारा पश्चिमी और पूर्वी अपभ्रंशों के बीच मध्यदेशीय अपभ्रंश के स्वरूप का पता चलता है। अब तक इस क्षेत्र की देश भाषा प्राचीनतम रूप बतलाने वाला ये पहला ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 5 प्रकरणों में समाप्त होने वाला एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें कुल मिलाकर 50 कारिकाएं हैं और इन कारिकाओं पर स्वयं ग्रंथकार ने ही विस्तृत व्याख्या भी लिखी है। प्रकरणों के नाम क्रमशः क्रियोक्ति व्यक्ति कारकोक्ति व्यक्ति उक्ति भेद लेखन विधि और व्यवहारिक लेख पत्र लिखन क्रम है। इनमें से आरंभिक 3 प्रकरण तो सव्याख्या उपलब्ध हैं लेकिन शेष 2 प्रकरणों की व्याख्याएं नहीं मिलती। व्याख्यात्मक अंश में एक विशेष बात यह है कि प्रथम प्रकरण की नवीन कारिका की व्याख्या अत्यंत विस्तृत है जिसमें एक उक्ति व्यक्ति प्रकरण स्टडी प्रश्न 02 प्रस्तुत प्रसंग में डॉक्टर शून्य चैटर्जी की स्टडी का विशेष उपयोग किया गया है। पेज नंबर 72 सैकड़ों देशी क्रियाओं के प्रयोग दिए गए हैं। व्याकरण की दृष्टि से आरंभ के दोनों प्रकरण क्रियोक्ति और कारकोक्ति विशेष महत्वपूर्ण हैं। ग्रंथकार ने उक्ति व्यक्ति नाम की व्याख्या करते हुए अपभ्रंश भाषा चना संस्कृत भाषा प्रकाशेश्याम इत्यर्थ अर्थातर्मपि यथा उक्तावपभ्रंश भाषिते व्यक्तिकृत संस्कृत तदेव करिष्याम इत्यर्थ। तात्पर्य ये कि इसमें तत्कालीन देश भाषा के प्रयोगों को संस्कृत व्याकरण के आधार पर समझाया गया है। मुनि जिन विजय जी ने इस ग्रंथ के प्रस्ताविक वक्तव्य में सूचित किया है कि उस समय इस प्रकार के उक्ति ग्रंथ बहुत से लिखे गए थे और उनमें से कई अब भी उपलब्ध हैं। ऐसे 4-5 उक्ति ग्रंथों का संग्रह उक्ति रत्नाकर नाम से मुनि जी ने प्रकाशित किया है। जैसा कि उपर्युक्त संस्कृत व्याख्या से स्पष्ट है, ग्रंथकार ने ग्रंथ में प्रयुक्त देश भाषा को सामान्यतः अपभ्रंश कहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उक्ति व्यक्ति की देश भाषा परिनिष्ठित अथवा शौरसेनी अपभ्रंश है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंडित मंडली उन दिनों भी संस्कृत और प्राकृत के विपरीत लोक प्रचलित देश भाषा को सामान्य रूप से अपभ्रशन कहा करती थी। उक्ति व्यक्ति की 6 कारिका की टीका में ग्रंथकार ने अपभ्रंश के विषय में जो कुछ कहा है उससे तत्कालीन पंडितों के मत का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रतिदेश बिना येयम सर्वजन साधारणा भाषा गावी गोनी प्रभुतिका सोपभ्रंश उच्यते। साचा संस्कृत भाषा मुच शिक्षद्य प्रवृत्ता तुरुष्क देशे द्विजाति जाति तुरुष्क जातिरिव ततो देशे देशे प्रतिविषयम् लोकः पामजनो यया यया गिरापभ्रष्ट्या यत् किचिद्भिधेयम् वस्तु व्यक्ति व्यवहरति साप्रंश भाषा तत्रिवार्थे संस्कृत रचिता संस्कृत शब्दावाच्येन स्वरूपेण प्रयुक्त प्रयोग नीता वाच्यत्वमायाति डॉट 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 या संस्कृत भाषा मुच्छिद्य यापभ्रंश भाषा प्रवृत्त तस्याः स्थाने यदा सैव संस्कृत भाषा पुनः परिवर्त्य प्रयुज्यते तदापभ्रंश भाषैव दिव्यत्वं प्राप्नोति पतिता ब्राह्मणी कृत प्रायश्चिता ब्राह्मणीत्वमिति चेति उद्धरण उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा का नमूना चूंकि उक्ति व्यक्ति व्याकरण ग्रंथ है इसलिए देशभाषा के नमूने विकीर्ण वाक्यों वाक्यांशों अथवा पदों के रूप में ही प्राप्त होते हैं। ग्रंथकार ने प्रायः ऐसे वाक्यों और वाक्यांशों का संस्कृत में अनुवाद भी दे दिया है। भाषा पर विचार करने से पूर्व ग्रंथ की पद्धति का कुछ नमूना देख लेना आवश्यक है। उदाहरणार्थ यहाँ नवी कारिका और उसकी व्याख्या का कुछ अंश दिया जा रहा है। आथि इति कर्तृनिष्ठा कीज इति साध्यगा क्रिया तस्मात् अस्ति करोति धातु सकर्मक एवं पेज नंबर 73 अथ अकर्मक सकर्म का एवं इत्युक्तम् अतो बाल शिक्षार्थ तदनुक्ता लोको कत्यो अप्रा अपि कियन्तो लिख्यन्ते तत्राकर्मक धात्वर्थानुटस्तावद् यथा गंग नाये धर्म हो पापुजा गंगाया स्नाते धर्मो भवति पाप याति अथवा धर्मु भा पापुगा धर्मु बभूव पाप जगाम अथवा धर्म होय पापु जाय धर्मो भविष्यति पाप यास्यति एवमनेपि पल्लवाः पूर्वोक्ताः प्रतिप्रयोग योज्या बाल शिक्षार्थम् ग्रंथ विस्तार भयाच न दर्शिता जस जस धर्मु बाल तस तस पापु घाट यांद्रिग यादव धर्मो वर्धयते तादृग तादृग पाप घटति घटयति वा घट चलने भवादो चुरादो च जब जब धर्मु बाद तब तब पापु ओहट यदा यदा धर्मो वर्धते तद तदा पाप अवघटति अवघट्यति वा घट संघाते चुरादो जैसे जैसे धर्मु जाम तैसे तैसे पापु खाम यथा यथा धर्मो जायते तथा तथा पाप क्षीयते जनो प्रादुर्भावे क्षये क्षयति वा जेई जेई धर्मु पसर तेन तेई पापु ओसर पन्यन धर्म प्रसृति तेन तेन पापं पसरति श्री गतो उपसर्गाद्दंतरम यहा यहा धर्मुच तेहा तेहा पापु खस यस्मे यस्मे धर्मश्चित्ति चट्यति वा तस्मिन् पाप स्खलित हसति वा चट स्फुट भेदने स्खल संचल चलने च तुम हस शब्दे जहां जहां धमु नांद ताहां ताहां पापु मार्द यत्र यत्र धर्मो नंदति तत्र तत्र पाप मंदते टुनादि समृद्धो मदी स्मृति मोहादिषु गतावत्र ज किन् धर्मु कीज ता किन् पापु कीज यस्मै धर्मः क्रियते तस्मै पाप क्षीयते दुक्रिय करणे क्षीस कूजन्त्यादि खिद्यत इवापस्तवात् जातो धर्मु पाव्य तातो पापु सामे यतो धर्मः प्राप्यते ततः पाप तत्र शाम्यति अप्ले व्याप्तो शमूदमु उपशमे याकर धर्मु उसस ताकर पापु ओरुस यस्य धर्मम् उच्छ्वसति तस्य पापमो हसति श्वस प्राणे हस हसने हृसति वा ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति एक उक्ति व्यक्ति में प्रयुक्त देश भाषा की सबसे विशिष्ट ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति यह है कि सामान्य वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन की क्रिया में प्रयुक्त प्रत्यय के उद्वृत स्वर समूह ऐ एई का एन होकर प्रायः अ होता है परवर्ती अपभ्रंश और तत्पश्चात ब्रज अवधि आदि में प्रायः ए होने की ही प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है जैसे चलती चली का प्रायः चले और करोति लेस देन करेई या करी का करे हो जाया करता था उक्ति व्यक्ति के बाद की अवधि में अ के साथ ही ऐ पेज नंबर 74 और ए वाले रूप भी समान रूप से मिलते हैं, लेकिन उक्ति व्यक्ति में कई ए वाले रूप बहुत कम मिलते हैं। रही, मानई, मिलई, चली आदि कुछ एक रूप केवल अपवाद हैं। अधिकांशता चली इक्वल्स चल, करी इक्वल्स कर, जाए जा, होई हो, पढ़ी इक्वल्स पढ़ आदि रूप ही मिलते हैं। इस प्रवृत्ति की पुष्टि सप्तमी एकवचन के प्रत्यय अ से भी होती है। डॉक्टर शून्य चटर्जी ने अन्य किसी संतोषप्रद व्युत्पत्ति के अभाव में इसे अहे अही ग्रेटर देन अधि से व्युत्पन्न माना है। इस प्रकार तारांकन स्कधि ग्रेटर देन स्कधि ग्रेटर देन स्कधे स्कधे न होकर उक्त व्यक्ति में प्रायः कांध या कांध रूप मिलते हैं। यहाँ भी अधे ग्रेटर देन अहे इक्वल्स ए न होकर अही हुआ। इस प्रकार अही ग्रेटर देन उक्ति व्यक्ति की भाषा की महत्वपूर्ण ध्वन्यात्मक विशेषता है। दो परवर्ती काल की अन्य अपभ्रंशों तथा अशून्य भा शून्य अशून्य की तरह उक्ति व्यक्ति की देश भाषा में भी दीर्घ या संयुक्त व्यंजन अथवा अनुनासिक व्यंजन के व्यंजन समूह में सरलीकरण के साथ पूर्ववर्ती स्वर में क्षतिपूरक दीर्घीकरण की व्यापक प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। जैसे भक्त ग्रेटर दैन भक्त ग्रेटर दैन भात पक ग्रेटर दैन पक ग्रेटर दैन पाक ग्रंथी गंठी गांठी। कभी कभी द्वितीय अक्षर पर स्वरपात होने के कारण उक्त पूर्ववर्ती स्वर में क्षतिपूरक दीर्घीकरण की जगह ह्रस्वीकरण हो जाता है। जैसे सामान्यतः भिक्षा ग्रेटर दैन भिक्खा ग्रेटर दैन भिख ग्रेटर दैन भिख होगा, लेकिन यदि तारांकन भिक्षा कारिक हो तो भिक्खा आर्य ग्रेटर दैन भिखारी ग्रेटर दैन भिखारी रूप होगा। इसी प्रकार ग्राम ग्रेटर दैन गांव, लेकिन ग्रामकार ग्रेटर दैन गवार। तीन संस्कृत के जो अन्य दीर्घ स्वर अपभ्रंश तक आते आते ह्रस्व हो गए थे वे आशून्य भा शून्य आशून्य के उदय होते होते क्रमशः लुप्त हो चले। इस प्रवृत्ति के बीज उक्ति व्यक्ति की भाषा में भी मिलते हैं। जैसे एक सासु श्वश्रु बाघ वल्ग भूख बुभुषा भीख भिक्षा जीभ जेहवा सेज शय्या सवती सपत्नी लाज लज्जा पीर पीरा हृदय हरित की। चार किसी शब्द के अंतर्गत व्यंजनों के लोप से उत्पन्न उद्वृत स्वय या तो संयुक्त हो जाते हैं अथवा उनमें संधि हो जाती है अथवा यह व श्रुति के समावेश द्वारा उनका स्वतंत्र अस्तित्व सुरक्षित रखा जाता है। जैसे लकुट लगुड ग्रेटर दैन लुड लॉडी इक्वल्स लकुटिका द्युतकार ग्रेटर दैन जुआर ग्रेटर दैन जुआर पंडित पंडिया पांडे पांडे सुगंध ग्रेटर दैन अंध ग्रेटर दैन सोंध चतुष्क ग्रेटर दैन चूका ग्रेटर दैन चौक सूपकार ग्रेटर दैन सुअ आर ग्रेटर दैन सुआर सुवार। ग्रेटर दैन उक्ति व्यक्ति स्टडी प्र शून्य उन्नीस वम शून्य लैम शून्य भाग दो प्र शून्य सात चार पांच चार छह पेज नंबर पचहत्तर। पांच अपभ्रंश का अन्य उद्वृत स्वर य आशून्य भा शून्य आशून्य में प्रायः ई हो जाता है, लेकिन उक्त व्यक्ति में प्रायः ई ही दिखाई पड़ता है और अप्रत्यय के योग से वह या हो जाता है। जैसे सुखिया दुखिया उपकारिया आदि। छह जहाँ तक तद्भव शब्दों में होने वाले व्यंजन विकारों का संबंध है संयुक्त और दीर्घ व्यंजनों के सरलीकरण की प्रवृत्ति परवर्ती अपभ्रंश में व्यापक रूप से दिखाई पड़ती है, परंतु राजस्थान और पंजाब प्रदेश की अपभ्रंश में ये प्रवृत्ति उतनी नहीं मिलती जितनी मध्यदेशीय अपभ्रंश में। उक्ति व्यक्ति में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। सात अन्य संयुक्त और असंयुक्त व्यंजनों के विषय में उक्ति व्यक्ति ने प्रायः पूर्ववर्ती अपभ्रंश के रूपों को भली भांति सुरक्षित रखा है। उन जोन बेर बूढ़ परब सावज आदि शब्द ऐसे ही हैं जो अपभ्रंश में ही यह रूप प्राप्त कर चुके थे। 8. उक्ति, व्यक्ति की भाषा अपभ्रंश में प्रचलित संस्कृत के अर्ध तत्सम और तत्सम शब्दों को ग्रहण करके कभी कभी अपनी ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति के अनुसार उनमें परिवर्तन भी कर देती है। परिवर्तन करने में सावर्ण्य की अपेक्षा स्वर, भक्ति और विप्रकर्ष की प्रवृत्ति अधिक दिखाई पड़ती है। जैसे रत्न से रत्न करके रतन रूप बनाना और वर्ष से वस न करके वरिस। इस व्यापक विधान के अंतर्गत उक्ति व्यक्ति के कुछ शब्द इस प्रकार हैं: मध्यक ग्रेटर दन मधक, आदर्श आरिस, सरषप ग्रेटर दन सरसिव, नित शुक्ल ग्रेटर दन सुकल ग्रेटर दन सुकल, त्यजतज लोक ग्रेटर दन लोग, ग्रेटर दन वरिस नित्य ग्रेटर दन। 9. इन तद्भव और अर्धतत्सम शब्दों की अपेक्ष उक्ति व्यक्ति में अनेक देशी शब्द भी मिलते हैं जिनमें काम करने वाली ध्वन्यात्मक प्रवृत्ति का विचार करना कुछ कठिन है। 10. उक्ति व्यक्ति की भाषा में कीर्तिलता वर्णरत्नाकर के विपरीत अरबी फारसी के विदेशी शब्द नहीं के बराबर मिलते हैं, इसलिए कहना कठिन है कि मध्यदेशीय बोली में इन विदेशी शब्दों की ध्वनि में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाता था। रूप रचना कारक विभक्ति। 1. अन्य अपभ्रंशों की तरह उक्ति व्यक्ति की भाषा में भी संज्ञा शब्दों की रूप रचना का आधार मुख्यतः अकारांत पुल्लिंग शब्द के ही रूप प्रस्तुत करते हैं, जिन पर कहीं कहीं सर्वनाम के विकृत रूपों का गहरा रंग दिखाई पड़ता है। शौरसेनी अपभ्रंश के प्रथमा एकवचन की प्रत्यय ऊ का प्रभाव प्राचीन कोसली पर इतना व्यापक जान पड़ता है कि प्रथमा के अतिरिक्त अन्य विभक्तियों में भी उकारांत पदों का प्रयोग हुआ है। पेज नंबर 76-2. सामान्यतः प्रथमा और द्वितीया एकवचन में किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं मिलता, लेकिन द्वितीया में कहीं कहीं अनुनासिक का प्रत्ययवत प्रयोग हुआ है, जैसे कापहूं तूंग 40,115, थाला मांझ 57,115, वियाली रुखुन उलंड 38,153। इसी प्रकार द्वितीया बहुवचन में भी कहीं कहीं ए प्रत्यय का प्रयोग मिलता है, जैसे भांडे मांझ 421, भने निवाड 48। 11. द्वितीय बहुवचन में न प्रत्यय का भी प्रयोग किया गया है, जैसे गुरु सीजे ताड 39। 12. गवाल तिथि आते न जुड 51। 28. 3. तृतीय एकवचन में अपभ्रंश काल की इन प्रत्यय के अवशेष उक्ति व्यक्ति में भी मिलते हैं, जैसे जीभे चाक 619, नाके सुंग 6113, हाथे छुअ 6116, हसिये ब्रीही लविंती कमारे 13। 12. वालीन रुखु उपद 24। 18.4. सप्तमी में या तो किसी प्रत्यय का प्रयोग नहीं मिलता या केवल अनुनासिक का प्रयोग मिलता है, जैसे मुंह चूब सेज ओल कोल्ले 60,120, सबही भूत दया करु 9,130, खेत हसिये ब्रीही लविते कमारे 13.22. 5. ही हिन ऐसी व्यापक प्रत्यय है जिसका प्रयोग प्रायः द्वितीय और चतुर्थी में तथा कभी कभी तृतीय और सप्तमी में भी एकवचन और बहुवचन दोनों में दिखाई पड़ता है। भीचही तार 4,817, बाघी दर 48,127, देवही नव 45। 19. सबही उपकारिया हो 1,014, बिहानही आदितु रफा 34। 23. 6. इन विभक्तियों और विकारी रूपों के अतिरिक्त विभिन्न कारकों के लिए कुछ परसक भी प्रयुक्त हुए हैं। इनमें से संप्रदान कारक के लिए प्रायः के परसर्गों का प्रयोग हुआ है, जैसे ब्राह्मणु के 14, 10, पर के आपनु के 38,115। जूझन के 3418, करबे के परमे के जावा के 11, 20-23, कभी कभी संबंध कारक का परसग कर भी संप्रदान में प्रयुक्त हुआ है, जैसे बनिए कर धनु कर 14-20, पेज नंबर 77, 7, अपादान में तो पास हूत हुत हंती परसर्गों का प्रयोग किया गया है, जैसे बाघ तो डरा 14-16, ओझा पास बीदा ले 14-16, गांव हूत आव 14,115, कहां हुत ए पुरुषुआ 23,115, 8, संबंध कारक में कर परसग का प्रयोग हुआ है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि जायसी और तुलसी की अवधि में जो केर और केरी परसग बहुतायत से मिलते हैं, उक्ति व्यक्ति में दृष्टिगोचर नहीं होते। करयुक्त रूपों के उदाहरण इस प्रकार हैं: राजकर पुरुष 16,111, परवसी कर घरु 2,213। परवर्ती संबद्ध संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार इस परसग में भी परिवर्तन होता है, जैसे बड़ करी डाल 35,121, तेहू करी सभान 10-15, पूंत करें बधाव नाच 36,128। 9, करण कारक में तृतीया विभक्ति की कुछ घिसी हुई प्रत्ययों के अतिरिक्त पास सु सेव परसर्गों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे राकर सागर ओडहू पास खनाविंताच 22-14 इक्वल्स राजसागर मद्रह खान्यति दुजने सेव सबकाहु तूट 3-7-1-23 घिये साकरे सेव सातु 21,131। 10, अधिकरण कारक में उक्ति व्यक्ति अन्य अपभ्रंशों की तरह मझ माहे आदि परसर्गों के अतिरिक्त क्रे धातु के कत्वांत तद्भव रूप करी का प्रयोग किया है, जो विलक्षण है, जैसे भूखेता ब्राह्मणु किन थाली करी इंधने भातु रांत ब्राह्मणु 15-10 थाली करी इक्वल्स थालियां कृत्वा जोड़ स्थपलयाम। नाम की तरह सर्वनाम के रूपों के विषय में भी उक्ति व्यक्ति समृद्ध है। सर्वनाम एक पुरुषवाचक सर्वनामों में से उत्तम पुरुष के निम्नलिखित रूप प्राप्त होते हैं: बहुवचन एकवचन प्रथमा हौ 2,215, हौ 19,131, द्वितीया मोही 21,2,216, तृतीया में पंचमी एक्स षष्ठी मोर 19,18, एमहे 14,127, एमहे 2,216, एक्स अमह तौ 14,121, अमह पास 2,119, अमहार 16,120। पेज नंबर 78, 2, मध्यम पुरुष के रूप निम्नलिखित हैं: एकवचन प्र शून्य द्वि शून्य क्र शून्य पम शून्य 50 प्र शून्य द्वि शून्य पम शून्य 50 प्र शून्य सप्त शून्य प्र शून्य द्वि शून्य त्रि च पम शून्य प शून्य स शून्य 1616 तेहि 2214 20,110 एक्स तोर 19/30 23/14 ताऊ 14/18 3। अन्य पुरुष के रूप सभी लिंगों में निम्नलिखित हैं: एकवचन सो 10/7 ताही 47/20 ता कर 33/25 तेहा 33,116 एकवचन ए 5। संबंध वाचक सर्वनाम एकवचन जो यो जे जे 33-14 जा के 14-23 तुम्हें 14/28 तुम 21/20 एक्स जा तव जाकर 33,125 जेहा 33-16 तुम तव 14/27 ते 10/9 तेन कर 10/15 तेन मांज 10 17 4 निकटवर्ती संकेतवाचक सर्वनाम के रूप सभी लिंगों में निम्नलिखित होते xxx बहुवचन ए एन मांज 19/30 x बहुवचन जे 1019 बहुवचन प्रशून्य द्वि शून्य त्रेकी रीपम श शून्य छह प्रश्नवाचक सर्वनाम एकवचन को 19118 पेज नंबर 79 पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को 2215 के ही काही 21-3 का के काही 22127 का करें 5111 का ताऊ का पास का पासु का कर नपुसंक लिंग प्र शून्य द्वि शून्य एकवचन का किघु 14123 त्रिशून्य कहें 2219 कोड 21118 8 निज वाचक सर्वनाम 7 अनिश्चय वाचक सर्वनाम प्र शून्य द्वि शून्य काहु 56131 द्वि शून्य अपान 41123 श शून्य आपने 38113 बहु शून्य आपने 44128 त्रि शून्य आपने 36 14 च शून्य आपन के 38115 स शून्य आपनी जाती 52116 बहुवचन के 21121 xxx त्रि शून्य के हूँ 14123 क्रियापद 1 उक्ति व्यक्ति की भाषा ने पूर्ववर्ती अपभ्रंश के माध्यम से संस्कृत की अनेक धातुओं का उत्तराधिकार प्राप्त किया लेकिन जिस विकरण विविधता के कारण संस्कृत धातु 10 गणों में विभाजित होते हैं वह कम हो गया और संज्ञा शब्दों की तरह क्रियाओं में भी विकरण वाले रूपों की प्रधानता हो गई किंतु उक्ति व्यक्ति काल में देशभाषाओं पर संस्कृत प्रभाव इतने व्यापक रूप से पड़ रहा था कि अनेक तत्सम और अर्ध तत्सम धातु उक्ति व्यक्ति में स्वीकृत हो गए छेद विभंज अनुसी रच सूच दर्प गविस उत्कीर्त आज्ञाप शेष बर्ज आलाप प्रतिबिंब शोभ आदि ऐसे ही शब्द हैं जो धातु के रूप में प्रयुक्त हुए हैं पेज नंबर 82 परस्मैपद और आत्मरेपद का भेद तो बहुत पहले ही लुप्त हो चुका था रूप भी क्रमशः जो अयविकरण वाले चुरादि गण के प्रेरणार्थक रूप तथा नाम धातु सामान्य विकरण वाले रह गए थे उक्ति व्यक्ति में आकर और भी संक्षिप्त हो गए जैसे चोरयति कथयति मार्गयति छिद्रयति आदि अपभ्रंश में चोरई कही मांगी छेदई हो गए और फिर उक्ति व्यक्ति में केवल चोर कह मांग छेद रह गए 3 सामान्य और प्रेरणार्थक क्रियाओं का आरंभिक अंतर मिट गया और उसके स्थान पर धातु स्वर दीर्घीकरण की प्रवृत्ति हो गई जैसे झाड़ झत्ति झाड़ झाट्यति 43 टुट इक्वल्स त्रुट्यति तोड़ त्रुट्यति 45 11 इसी प्रकार मूल धातु और प्रेरणार्थक तथा नाम धातु का आरंभिक अंतर मिट जाने के बाद अंतर करने के लिए आव अव आ आ विकरण का सहारा लिया गया है जैसे दर्पयति के लिए दापव 51 21 विज्ञापयति के लिए विनव 31 28 निवट निवटाव 48 14 निवर्तते निवर्तयति 4 अनेक देशी धातुओं का भी उक्ति व्यक्ति ने संस्कृत उपसर्ग और गुण वृद्धि के द्वारा सामान्य क्रियापदों के सांचे में ढाल दिया है यहाँ तक कि उनकी व्युत्पत्ति का पता लगाने में और भी कठिनाई उपस्थित हो गई है 5 काल रचना के क्षेत्र में प्रायः तीन प्रकार के रूप मिलते हैं, तिन्त तद्भव, कृदंत तद्भव और संयुक्त। संस्कृत से तिन्त क्रियापद प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए उक्ति व्यक्ति की भाषा को भी उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुए। ये तिन्त तद्भव रूप केवल चार कालों में ही मिलते हैं, सामान्य वर्तमान काल कर्तृवाच्य, सामान्य वर्तमान कर्मवाच्य, सामान्य भविष्यत और आज्ञात लोट और लट। क उक्ति व्यक्ति में सामान्य वर्तमान काल के तिन्त तद्भव रूप इस प्रकार हैं: एक शून्य प्र शून्य पू शून्य कर करी विरल, म शून्य पू शून्य करिस उ शून्य पू शून्य करूं करो करहु। ख कर्मवाच्य में सामान्य वर्तमान काल की क्रिया में य ई आर्ट य विकरण का प्रयोग मिलता है, जैसे बहु शून्य करती करहु पय 20,129 equals पठ्यते जेव्य 21 13 equals भुज्यते क्राव्य 21 17 equals कार्यते खेलिय 2015 equals क्रीड्यते ग ह वाले सामान्य भविष्यत काल के रूप उक्ति व्यक्ति में निम्नलिखित मिलते हैं: पेज नंबर 81 एकवचन प्र शून्य पू शून्य म शून्य पू शून्य उ शून्य पू शून्य तारही 21,120 तजे 9,123 मागेहूं 2,215 घ सामान्य आज्ञा के रूप करही करिहसी तारांकन करिहूं जेवे 9,121 करिहसी 20,113 प्र शून्य पू शून्य म शून्य पू शून्य अग भविष्यत आज्ञा के रूप निवन तेजु 16/23 equals निमंत्रिष्यसी परेजु 16 24 equals पठिष्यसी आगे चलकर तुलसीदास में भी मारेजु बांधजु जैसे रूप मिलते हैं। 6 कृदंत तद्भव वाले रूप अधिकांशतः भूतकाल के ही मिलते हैं, केवल एक रूप सामान्य भविष्यत काल का मिलता है। करु करु क सामान्य भूतकाल के रूप में दुर्भाग्य से उक्ति व्यक्ति में बहुत कम मिलते हैं। सामान्य भूतकाल के रूपों की यह विशेषता है कि उनमें अकर्मक और सकर्मक के अनुसार अंतर हो जाता है, क्योंकि अकर्मक क्रिया के भूतकालिक रूप कर्तरी होते हैं और सकर्मक के कर्मणि। अकर्मक क्रियापद सभी पुरुष पुल्लिंग कर्तता के अनुसार, एक शून्य गाभा बाधा और सभी पुरुष स्त्रीलिंग कर्तता के अनुसार, बाधी भई बहु शून्य गए भय तारांकन बाधे आए बांधी भई सकर्मक क्रियापद। जब कर्तता पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष हो तथा कर्म दोनों वचनों और लिंगों में हो, दर्शन कियसी देखेसी 9,110 कियसी नियेसी पावेसी 22,110 जब। पेज नंबर 82 कर्म पुल्लिंग एकवचन और कर्तता अनुक्त हो ती काह किय 2 10 मई पड़ा 20,121 जब कर्म पुल्लिंग बहुवचन हो ए ब्राह्मण थापे 21,117 ख हेतु मद्भूत अन्य पुरुष जई जई पावत तब करत 8 16 जई देव वृष्टि करत अन्न होत 9,115 जई ईंधन पायत त ओडन पायत 9,116 ग सामान्य भविष्यत काल ब 8 अब 8 तव्य वेद पब स्मृति अभ्यास भी पुराण देखब धर्म कस्ब 1:2:1:6:1:7 इस पर कर्म के लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है, जैसे ए बेटी काही देवी 22,127 7 संयुक्त काल प्रायः तिन्त तद्भव और कृदंत तद्भव के रूपों को मिलाकर निम्नलिखित प्रकार से बनाए जाते हैं: क शत कृदंत जोड़ सहायक क्रिया का तिन्त रूप, आखी देखत आच 616 चाखत आच 6,111 सुंघत आच 6,113 बोला ताच 713. यही क्रियापद कहीं कहीं अपूर्ण भूत का अर्थ देता है, जैसे काह करत आछे 20111. ही कुर्वता स्थितम को तहां जेवत आछ 2117. इक्वल्स कस्तन भुंजान आसीत ख कत्वांत पूर्वकालिक जोड़ सहायक क्रिया का तिंत रूप धर्मु करी आच 11. इक्वल्स धर्म कृत्वा आस्ते. यहाँ आसन भूतकाल का बोध होता है, परंतु इस प्रकार का एक ही उदाहरण उक्ति व्यक्ति में मिलता है. 8. उक्ति व्यक्ति में संयुक्त काल की जितनी बहुलता मिलती है, उतनी संयुक्त क्रिया की नहीं मिलती. संयुक्त क्रियाएं या तो तत्सम शब्दों के साथ कर धातु के रूपों से बनाई गई हैं, या फिर कारण चाह जेवन मांग और ले पाला जैसी सरल संयुक्त क्रियाएं मिलती हैं. 9. सहायक क्रियाएं आच हो आह और रह चार धातुओं से निर्मित प्रयुक्त हुई हैं. इनमें भी आच वाले रूपों की बहुलता है. इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय मध्यदेशीय बोलियों में भी इसका व्यापक प्रसार था, लेकिन आगे चलकर अवधि में केवल हो और रह वाली सहायक क्रियाएं ही अवशिष्ट रहीं. पेज नंबर 83. इस प्रकार मुख्यतः संदेश रासक प्राकृत पैंगलम वर्णरत नाकर और कीर्तिलता तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण के आधार पर परवर्ती अपभ्रंश के पश्चिमी पूर्वी और मध्य प्रदेशीय भेदों की विशेषताओं के साथ ही अपभ्रंश युग तथा आधुनिक भाषाओं के पूर्वकाल के बीच की भाषा की सामान्य प्रवृत्तियां निर्धारित की जा सकती हैं. उक्त ग्रंथों की भाषा पर अलग अलग विचार करते समय स्पष्ट रूप से ध्वनि तथा रूप रचना संबंधी कुछ ऐसी विचारधाराएं दृष्टिगोचर हुई हैं जो प्रदेश भेद के बावजूद सब में सामान्य हैं. परवर्ती अपभ्रंश को सुविधा के लिए कुछ विद्वानों ने अवहट नाम दिया है, यद्यपि अवहट और अपभ्रंश संज्ञा में अर्थ की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, फिर भी प्रयोग की दृष्टि से अवहट संज्ञा परवर्ती अपभ्रंश के ग्रंथों में ही अधिक मिलती है. इसलिए किसी अन्य उपयुक्त नाम के अभाव में परवर्ती अपभ्रंश जैसे बड़े शब्द के लिए अवहट शब्द का प्रयोग किया जा सकता है. रोडा कृत रावल वेल तत्कालीन बोलियों की वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण सामग्री इधर प्रकाश में आई. यह एक शिलांकित भाषा काव्य है जिसका नाम शिलालेख में रावल वेल दिया गया है और जिसका रचयिता कोई रोडा नामक कवि है. इसे प्रकाश में सर्वप्रथम लाने का श्रेय डॉक्टर शून्य हरि वल्लभ भायानी को है. हिंदी में पहली बार डॉक्टर शून्य माता प्रसाद गुप्त ने उक्त शिलालेख का पाठ प्रकाशित किया है तथा उसके संबंध में अपना विचार भी व्यक्त किया है. ये शिलालेख इस समय बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में सुरक्षित है. इसका आकार 45x33 है. प्राप्त सूचनाओं के अनुसार यह मालवा के धार नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था. वर्तमान अवस्था में वह भग्न है और कुछ अंश खंडित हो चुका है. प्रस्तुत रूप में भी कुछ अंश अपाठ्य अथवा अपठित है. डॉक्टर शून्य भयानी और डॉक्टर शून्य गुप्त दोनों ही विद्वानों के अनुसार इसका लिपिकाल ईसा की 11वीं सदी होना चाहिए. डॉक्टर शून्य गुप्त के अनुसार रावल वेल राजकुल विलास है. संपूर्ण शिलालेख एक ललित काव्य है जिसमें 6 देशों की नायिकाओं का नैक्षिक वर्णन किया गया है. इनमें टटकिनी गौरी तथा मालविया नायिकाओं का उल्लेख तो स्पष्ट है, शेष 3 के प्रदेश स्पष्ट नहीं हैं. डॉक्टर शून्य भायानी 1 को कानोज अर्थात कन्नौज देशिया मानते हैं, किंतु डॉक्टर शून्य गुप्त के अनुसार वह स्पष्टतः कानोडु है और कानोज से उसका कोई संबंध नहीं है. अन्यत्र तैल नाम भी आया है जिसे डॉक्टर शून्यगुप्त त्रिकलिंग अर्थात दक्षिणी कौशल मानते हैं और उनका विश्वास है कि इस शिलालेख की भाषा दक्षिणी कोसली है। एक भारतीय विद्या बम्बई भाग 17 अंक 3-4 प्रशून्य 130-46-1959 हिंदी अनुशीलन धीरेन्द्र वर्मा विशेषांक वर्ष 13 अंक 1-2 1960 राहुल वेल मित्र प्रकाशन इलाहाबाद 1963 पेज नंबर 84 जहां डॉक्टर शून्य भायानी इस शिलांकित काव्य को विभिन्न प्रादेशिक बोलियों का नमूना मानते हैं वहां डॉक्टर शून्यगुप्त संपूर्ण काव्य को केवल एक भाषा में रचित समझते हैं और वह है दक्षिण कोसली। विवादास्पद पंक्ति है अंतिम जिसमें कवि और कृति के नाम का उल्लेख है। डॉक्टर शून्यगुप्त के अनुसार उस पंक्ति का पाठ इस प्रकार है रोडे राहुल वेल बखानी पुनु तहम भाषह जैसी जानी डॉक्टर शून्य भायानी अन तहम को आठ हम पढ़ने के पक्ष में हैं। वस्तुस्थिति यह है कि प्रस्तुत रूप में केवल 6 नक्षिक प्राप्त हैं और यदि प्रत्येक की भाषा का विश्लेषण किया जाए तो नायिकाओं के देश भेद के साथ उनके वर्णन की भाषा में भी पर्याप्त देश भेद है। इसलिए विवाद का समाधान केवल अंतिम पंक्ति के उक्त अनतहम के पाठ पर निर्भर नहीं है। यदि डॉक्टर शून्यगुप्त का ही पाठ मान लिया जाए तो पुनतहम भाषह जैसी जानी का स्पष्ट अर्थ यही है कि उन भाषाओं का में जैसी जानी तहम भाषह स्पष्ट ही षष्ठी बहुवचन है जो विकल्प से सप्तमी बहुवचन का भी अर्थ देता है। कवि के कथन से स्पष्ट है कि उसने राहुल वेल में जितने देशों की नायिकाओं का वर्णन किया है उन देशों की भाषाओं को वह जैसा भी जानता है उसी के अनुसार बखान करने के लिए प्रयत्नशील था। इस कथन की पुष्टि स्वयं शिलांकित काव्य की भाषा में भी होती है। संपूर्ण शिलालेख का पाठ न देकर यहाँ विभिन्न नायिकाओं के वर्णन के नमूने क्रम से प्रस्तुत हैं। एक दो आँखें ही काजलू तरलऊ दाजर तुछऊ फूल ई तम्बोले मनु मनु रातऊ रातऊ कंचुआ अति सुठ चांगऊ गाधऊ वाधऊ आंगऊ आछऊ अहर सोई देई कवियान दुहा पहिरनु भालऊ भावई तासु सोह की कछरा हावी विनु आहरणे जो पाइन हु सोह आनुवना तहम मो नेह आयसी वेटिया जाघरु आवई ताही की तुलिमव को पावई वलियही वाधली अही जे चांगिव तेवान तू वी लागिव अही आंतुजे वेल फूलें अक्षऊ ताऊ की तेन चे वोल्ले तीन चार पेज नंबर 85 आविलु काछा दद गाधा आनिकु जोवनु ऊ रूथाधा हाथे ही रीठे उजल लानहा जीपुडी तागे आविल सान्हा पाही पाहनसिया चिरु चांगा लोन ची आनिक मांडी आगा गोल्ले आनंदिय तुझ ची देसु आनिक तेन चा तो वेजु डॉट 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 का ची आईसी रोल सोही देखत तो ही मयनु व मोही एहू कानोडु काई सऊ झाखर वेस एम्हानु न जऊ देखर आ उंडऊ जो राउलु सोहई थर नऊ सो एथु कोक न मोहई दहरु आँखें काजलु दीनऊ जो जानी सो थई नऊ वानऊ करडिम्ब अनु कांष्टी ऊ कान्ही काय करविद सोहही आन्ही हाथी माठी ऊ सुथ साही थू खता जनु सेलई चाही पहिरन फरहरे सोहई राउल दीसतु सऊ जनु मोही हास गई जा चालती ऐसी सा बाख गहु राउल कैसी जही घरे ऐसी ओलग पैसई तम घरु राउल जैसु दीसई केहा टैली पुतु तुहुं झाँखी अ रा दू वेहु तुडुन आँखी वेहु एक कसो इथु वन्यजर अख्व हिया भिजई पर अड्डा केह पाह जो वद्धा सो पर तेहां गोरी लद्धा चंद सवाना दीहा कियई जे मुहु एक के नवी मंडिजर कमेडियही सोहही दुई गन्ना पेज नंबर 86 मंडन संडन दही परे अन्ना कंठी कंठी जलाली सोहई एहा तेहा सऊ जन सोहई गोरड़ अंगी वेरंगा कंचचू संझही जोनही नम संघ हुटेल वोल पहिरनु घाघरेही जे केरा कच्छा वछा दही परा इतरा एहा वेहु सुहावा आंतु संडा दही परी एही टक्किनी पैसती सा निहाली जनू मलमल चाही की स्रे वंडिरु टाक तुहु वोलसी राहु आगे वांतु तू भूलसी तई की कतू बेसरे दीथे सी घेथे फाइव सोहर जेहर तय वान गौरन सुआनु सा तई कत दीथे ते देखी वेसी की भावंथी मीठे खोपही ऊपर अम्बे अल कैसे रवि जनी राहु घेतल जैसे भूही तू रूरी देख बर्व कैसी ताही कामव करी धनु अडनी जैसी अरे अरे वव देखसी न टीका चांदही ऊपर एह भई टीका थनहर माझे जो हारू सुतेरऊ सोहन न सोए कुछ ठेरऊ पर्दी आंतरे थनहरू कैसट सरय जले विच चांदा जैसऊ सुतेर हारू रोमावली कलियऊ जनी गांगही जलू जुनही मिलियऊ पहनियल वाही जे चंदहाय वीजर चांदही ते चंदहाय वी उडनु संदरी सेल्धी कीजर रू देखितार्डू सब जनू खीजर धवल र काप ओधियल कैसे जेहर रुचर तय वोलू पेज नंबर 87 मोलू पैसई दीसई तारे वैसही आथी की ऐसी गौडी ज रावले सो जनू लाछिन मांडेट गौड तुहु एकू को पुनु औरवर कोतई सहू भड़म वोलई ज पुनु मालवीयु वेसुही आवंतु कामवदेव जानू आपना हथियारहु भूली इहां हमहारी प्रू भगी खोंप करिट भर तही सारिखव कहायडम आथी एव किसी खोंपही ऊपरी सोल्ढव दीनव वानु ते किसव भावई जिसव सिदुर्यव रजायसु कामवदेव ही करु नावी भुनहु रम दुई तु रूरीही सानहीही अडीह आँखेही करई गनिन जैसव कामव करु धनुहु चदावियऊ आखिर फाटा तीखा उजला तरला से वांति जीभ खुजई तैसव हथियारु पावियु कामवदेव जगही काय करेसी ऐसव बृहस्पतिही नउ मूझी दुई कपोल जिसा किया ते देखथम सवन तरुणा पाविवे करी खनुसई धस धस पढ़ी हिया तेना पहरिया घडिवन किसा भावंथी जनु पूनिवही करा चांद कोड़ई तही करु सुहावउ तेही करी तललई उफले ओठी स कवि सोहलाधी जवीवी झलहम पवाह सो पल्लवहम ते तुसियुवी लधी मोतीहू करह एकुजी हारु स सोह देखथम ऐसौ भावई अंसारु ऊहुऊ एहु संसारु तपुनु जवही ते हाथी पायही पहिया सोना केरा चूडा स देखी तुम्हारा जे वेस ते सब भावही कूडा एहरसी सुविस जही आवियु पैसई डॉट 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 रावलू वूची उपर्युक्त उदाहरणों में पारस्परिक भाषा भेद उल्लेखनीय है व्यंजन द्वित्व का प्रयोग विशेष रूप से चौथे उदाहरण में है जिसमें टक्किनी नायिका का वर्णन है अन्यत्र यदि एक या एकु है तो यहाँ एक का है इसी प्रकार भिजी पेज नंबर 88 वन्यजी गन्न अन्नम वोल आदि व्यंजन द्वित्व वाले शब्द प्रयुक्त हुए हैं टक प्रायः पंजाब का दक्षिणी पूर्वी भाग माना जाता है और उच्चारणगत उक्त विशेषता इस प्रदेश की बोली में आज भी पाई जाती है इसलिए रावल वेल में टक्किनी नायिका का वर्णन यदि उस प्रदेश की बोली का प्रतिनिधित्व करता है तो युक्ति संगत कहा जाएगा इसी प्रकार गौड़ी नायिका के वर्णन में भूतकालिक अल्प्रत्यय वाली क्रियाएं मिलती हैं और यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि ऐसी क्रियाएं किसी अन्य नायिका के वर्णन प्रसंग में प्रयुक्त नहीं हुई हैं जैसे धवल काप ओधियल कैसे मोह ससी जोन पसारेल जैसे यह विशेषता बंगला मैथिली मगही भोजपुरिया आदि गौड़ीय भाषाओं में आज भी मिलती है द्वितीय उदाहरण में स्पष्ट रूप से प्रदेश विशेष का उल्लेख नहीं मिलता गोहा अथवा गोल शब्द किसी प्रदेश के सूचक हैं अथवा नहीं यह विचारणीय है किंतु इस वर्णन में छी चे चा प्रत्यय ऐसे हैं जो किसी अन्य वर्णन खंड में नहीं आए हैं जैसे एक तेन चावेजू तेन चे वोल्ले लोकहम छी देठी इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस खंड में मराठी भाषा में मराठी नायिका का वर्णन करने का प्रयत्न किया गया है। तृतीय उदाहरण में एम्हानु, काय करिवउ, थई नउ आदि प्रयोग ऐसे हैं जो पुरानी पश्चिमी राजस्थानी की याद दिलाते हैं। प्रसंगात यही वही खंड है जिसमें खता जनु अर्थात क्षत्रिय जन का उल्लेख हुआ है, इसलिए बहुत संभव है कि इसमें तत्कालीन राजस्थानी बोली का नमूना प्राप्त हो। छठा अर्थात अंतिम उदाहरण मालवीयु नायिका का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है जिसमें अम्हारी काय करिसी न किसा भावंथी नावंथी आदि अनेक प्रकार के विशिष्ट प्रयोग मिलते हैं जिनका संबंध उस क्षेत्र से संभवतः जोड़ा जाए। सबसे संक्षिप्त तथा सामान्य प्रथम खंड है जिसमें किसी प्रदेश विशेष का उल्लेखनीय वैशिष्ट्य परिलक्षित नहीं होता। अधिक से अधिक ऐसी वेटिया जागरु आवई में वेटिया शब्द ऐसा है जिसे पुरानी कोसली अथवा अवधि से संबद्ध कहा जा सकता है। हेमचंद्र के यहाँ भी विट्टी शब्द आया है, वेटिया नहीं। इसे कोसल प्रदेश की विटिया का निकटवर्ती रूप माना जा सकता है। इसी प्रकार डॉक्टर शून्य भायानी ने इस काव्य खंड में क्रमशः अवधि मराठी पश्चिमी हिंदी पंजाबी बंगला और मालवी के पूर्व रूपों का अनुमान लगाया है। वह पेज नंबर 89 सामान्यतः तथ्यपूर्ण एवं युक्तिसंगत माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि देश भेद को छोड़कर राउल वेल की भाषा के समग्र रूप पर विचार करें तो कुल मिलाकर यह भाषा आधुनिक भाषाओं के अत्यधिक निकट की प्रतीत होती है। यदि इसका रचना काल 11वीं शती ईस्वी सही है तो यह उस समय के प्राप्त अपभ्रंश तथा अवहट के सभी ग्रंथों से अधिक आधुनिक तथा विकसित भाषा है। इस शिलालेख की भाषा हेमचंद्र प्राकृत व्याकरण को परिनिष्ठित अपभ्रंश से ही नहीं बल्कि अब्दुल रहमान के संदेश रासक से भी अधिक आधुनिक है। इसके तद्भव शब्द आज के हिंदी भाषा भाषी के लिए काफी परिचित है। व्याकरण संबंधी विशेषताएं भी अवहट की अंतिम का पता देती हैं। अब अवहट की इस पृष्ठभूमि पर सामान्यतः आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं और विशेषतः हिंदी की विविध बोलियों के उदय का ऐतिहासिक विवेचन संभव हो सकता है। आधुनिक भाषाओं का उदय अवहट अथवा परवर्ती अपभ्रंश के बाद भारतीय आर्य भाषा में जो विशेष प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है वह है अतिशय देश भेद की। अवहट की जितनी सामग्री अब तक प्राप्त हुई उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि साहित्यिक अवहट के अधिक से अधिक तीन प्रदेश भेद थे, पश्चिमी पूर्वी और मध्यदेशीय, किंतु इसके बाद 14वीं शताब्दी के आरंभ से ही गुजराती मराठी बंगला आदि आधुनिक भाषाओं की स्वतंत्र सत्ता दिखाई पड़ने लगती है। यही नहीं, स्वयं मध्य प्रदेश में भी राजस्थानी ब्रजभाषा खड़ी बोली अवधि और मैथिली आदि बोलियों की निजी विशेषताएं स्पष्ट होने लग जाती हैं। भारतीय आर्य भाषा में घटित होने वाला ये क्षेत्रीय भेद प्राकृत काल के क्षेत्रीय भेद से निश्चय ही भिन्न प्रतीत होता है। व्याकरणों द्वारा निरूपित महाराष्ट्री शौरसेनी मागधी पैशाची चुलिका पैशाची आदि प्राकृत भेदों में मुख्य भेद उच्चारण संबंधी ही हैं, व्याकरणिक भेद नाम मात्र को हैं। लेकिन यही बात गुजराती मराठी बंगला और राजस्थानी ब्रजभाषा खड़ी बोली अवधि तथा मैथिली के विषय में नहीं कही जा सकती। क्षेत्रीय भेद का कारण इस ऐतिहासिक घटना के कारणों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि विभिन्न प्रदेशों में आधुनिक भाषाओं का उदय जितना आकस्मिक दिखाई पड़ता है उतना आकस्मिक वस्तुतः है नहीं। भाषा के इतिहास में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। बड़ी से बड़ी ऐतिहासिक क्रांति भी भाषा के ढांचे में सहसा परिवर्तन नहीं ला सकती। अक्सर धीरे धीरे होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन शताब्दियों बाद जब एकत्र हो जाते हैं तो भाषा एकदम बदली हुई पढ़ने लगती है। गुजराती, मराठी, बंगला तथा हिंदी बोलियों के उदय के बारे में भी यही नियम लागू होता है। इन आधुनिक पेज नंबर 90 भाषाओं का उदय और विकास अपभ्रंश के ही गर्भ में धीरे धीरे सैकड़ों वर्षों से होता, दूसरी ओर आधुनिक भाषाओं के नए रूप प्रचलन में आते रहे, क्रमशः रूपों के ह्रास आ रहा था। एक और साहित्यिक अपभ्रंश के रूप में धीरे धीरे अप्रचलित और नवीन रूपों के विकास की प्रक्रिया से ही आधुनिक भाषाओं का उदय हुआ। आधुनिक भाषाओं के ये नए रूप निश्चय ही उनकी प्रादेशिक बोलियों से आते रहे हैं, फिर भी यह बात विचारणीय ही जाती है कि 14वीं शताब्दी के आस पास इन प्रादेशिक बोलियों का संगठन भाषा के रूप में क्यों कर हुआ। गुजराती, मराठी और बंगला के उदय का कारण, जिन जनपदीय बोलियों का विकास साहित्यिक भाषा के रूप में शीघ्र हुआ, उनमें गुजराती, मराठी और बंगला मुख्य हैं। यदि इन प्रदेशों अथवा जनपदों के इतिहास पर विचार किया जाए तो पता चलेगा कि अनेक छोटे मोटे राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद इनकी भौगोलिक सीमाएं शताब्दियों पहले से बहुत कुछ अपरिवर्तित रहती आई हैं। अपभ्रंश काल से ही ये प्रदेश आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि के स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित होने लगे थे। गुजरात के सोलंकी, देवगिरी के यादव और बंगाल के पाल राजाओं ने अपने भूखंडों में स्वतंत्र शासन सत्ता स्थापित करने के साथ ही अनेक लोकप्रिय सांस्कृतिक कार्यों द्वारा जातीय इकाइयों को संगठित होने का अवसर प्रदान किया। शासन की दृष्टि से इन जातियों की भौगोलिक सीमाओं में एक सूत्रता स्थापित हुई और राजवंशों में भी परिवर्तन कम हुआ। इसके अतिरिक्त इन प्रदेशों के राजवंशों ने संस्कृत की अपेक्षा लोकबोलियों को अधिक प्रश्रय और प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार जातीय संगठन ने भाषा का उत्थान किया और भाषा ने जातीय संगठन का, दोनों ही परस्पर वर्धमान हुए। यहाँ तक तो गुजराती, मराठी और बंगला तीन भाषाओं के उदय के सामान्य कारण हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक के कुछ निजी कारण भी हैं। उदाहरण स्वरूप गुजराती और उसके साथ ही सिंधी के विकास में वाणिज्य विशेष सहायक हुआ, जबकि मराठी और बंगला के उत्थान में राजकीय और सांस्कृतिक कारण ही मुख्य थे। उत्तर भारत में तुर्कों के आक्रमण से पश्चिमी वाणिज्य मार्ग बंद हो जाने के कारण 10वीं सदी तक वाणिज्य में जो ठहराव आ गया था, वह थोड़े दिनों बाद जब दूर हुआ तो उससे लाभ उठाने वालों में सिंध और गुजराती अग्रणी रहे। इस नई वाणिज्य व्यवस्था ने इन जातियों के स्वतंत्र संगठन में विशेष योग दिया। इसके विपरीत मराठी भाषा भाषी जाति के संगठन में राजनीतिक केंद्र दिल्ली से उसका सतत अलगाव और भक्ति आंदोलन विशेष रूप से सहायक हुआ। केंद्र से प्रायः स्वतंत्र रहना बंगला भाषा भाषी जाति के उत्थान में भी सहायक हुआ, लेकिन इसके साथ ही धार्मिक जागरण और जहाजरानी के जरिए वाणिज्य विस्तार भी निमित्त कारण हो गया। परवर्ती अपभ्रंश और उसमें हिंदी के बीज, 91 हिंदी बोलियों का उदय। इसके विपरीत मध्यदेश की भाषा का विकास दूसरे ढंग से हुआ। जिस प्रकार सिंध, गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल में बहुत पहले ही एक साहित्यिक भाषा का उदय हो गया, उसी प्रकार मध्य प्रदेश में एक साहित्यिक भाषा का उदय न हो सका। इस विशाल भूभाग में अनेक छोटी छोटी साहित्यिक बोलियां बन गईं। इन बोलियों में भी सबका विकास एक सा और एक साथ नहीं हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थानी और मैथिली बोलियों का उदय पहले हो गया, इनके बाद अवधी का उदय हुआ। ब्रजभाषा और खड़ी बोली का उदय लगभग साथ ही साथ हुआ, लेकिन साहित्यिक दृष्टि से ब्रजभाषा खड़ी बोली से पहले ही लोकप्रिय तथा प्रौढ़ हो गई। खड़ी बोली उठी तो बहुत पहले ही, लेकिन एक तो जन्म के साथ इसे मातृभूमि छोड़कर दक्षिण में प्रवासी होना पड़ा, दूसरे ये शुरू में ही विदेशी भाषा भाषियों के हाथ पड़ गई, तीसरे विदेशी धर्म प्रचार का साधन बन गई और चौथे संयोग से सामान्य जन समुदाय से दूर नगर तथा राजदरबार में बांध गई, इसलिए आरंभ में इसका उत्थान ब्रजभाषा की अपेक्षा मंद पड़ गया, क्योंकि खड़ी बोली के ठीक विपरीत ब्रजभाषा का विकास उसकी ठेठ जन्मभूमि में ही हुआ। उसे संस्कृत भाषा की विशाल परंपरा का आधार प्राप्त हुआ, वैष्णव भक्ति के प्रसार का गौरव और सबसे बढ़कर लोक हृदय के प्रतिनिधि भक्त कवियों का संबल मिला। पंजाबी का उदय भी तभी हुआ जब उसे नानक आदि संत कवियों की भावराशि तथा सामान्य जनसमूह के सांस्कृतिक जागरण की प्रेरणा मिली। मैथिली और राजस्थानी, यदि हिंदी बोलियों में से एक एक को लेकर उनके उदय के कारणों पर विचार किया जाए तो अनेक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाशित होंगे जिनसे बहुत सी भ्रांत धारणाएं निर्मूल हो सकती हैं। मैथिली का उदय इतना पहले इसलिए संभव हो सका कि मिथिला शासन की स्वतंत्र इकाई के रूप में एक ही राजवंश के अंतर्गत कई शताब्दियों तक स्थापित रहा। ज्योतिरीश्वर और विद्यापति उसी राज्यकाल की उपज हैं। सांस्कृतिक इकाई के रूप में इस जाति का संगठन दीर्घ परंपरा से होता आया है। भौगोलिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से उन दिनों मिथिला मध्य देश से अलग और स्वतंत्र था। फलत इस प्रदेश की बोली हिंदी की अन्य बोलियों से बहुत कुछ भिन्न हो गई। ये ध्यान देने की बात है कि मैथिली का उदय और विकास जिस गति से हुआ, वह पीछे प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मंथ हो गया, लेकिन आधुनिक युग में जातीय भावना के अभ्युदय के साथ ही मैथिली फिर बढ़ चली और आज स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यह बोली परिनिष्ठित हिंदी से अलग स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास कर जाएगी। राजस्थानी की स्थिति भी बहुत कुछ मैथिली जैसी ही है। पश्चिमी राजस्थान बहुत दिनों तक जातीय और प्रशासकीय रूप में गुजरात से संबद्ध रहा, दोनों जातियों पेज नंबर 92 और बोलियों का विकास साथ साथ हुआ। पुरानी गुजराती और पुरानी पश्चिमी राजस्थान पृथ्वीराज चौहान के ही समय से और शायद उससे भी कुछ पहले से दिल्ली आगरा के शासन सूत्र से संबद्ध रहा। फलत उसकी भाषा पूर्वी राजस्थानी पुरानी ब्रजभाषा से मिलती जुलती है। धीरे धीरे राजस्थान का राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास इस प्रकार हुआ कि राजस्थानी बोली समूह की मुख्य बोली मारवाड़ी प्रधान हो गई और अब वह परिनिष्ठित हिंदी से स्वतंत्र साहित्यिक भाषा के रूप में गठित होने लगी है। अवधी ब्रजभाषा और खड़ी बोली मैथिली और राजस्थानी के विपरीत मध्य देश की शेष तीन मुख्य साहित्यिक बोलियां अवधी ब्रजभाषा और खड़ी बोली अलग अलग होती हुई भी आरंभ से ही एक जातीय भाषा के रूप में विकसित होने के लिए प्रयत्नशील दिखाई पड़ती है। इतिहास साक्षी है कि अवधी ने किस प्रकार तुलसीदास के समय तक आते आते ब्रजभाषा में अपना अस्तित्व मिलाकर एक काव्य भाषा के निर्माण में योग दिया और आगे चलकर अवधी मिश्रित ब्रजभाषा ही मध्य देश की सर्वमान्य काव्य भाषा हो गई। साहित्यिक दृष्टि से अवधी ने अपना ऐतिहासिक कार्य पूरा कर दिया। इस तरह ब्रजभाषा ने भी खड़ी बोली के लिए मार्ग प्रशस्त करके नवीन साहित्यिक भाषा को आगे बढ़ाया। निःसंदेह खड़ी बोली ब्रजभाषा के समानांतर ही उर्दू साहित्य में परिमार्जित होती रही, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रजभाषा के परिनिष्ठित होने के बाद ही खड़ी बोली का आधुनिक रूप सामने आ सका। सौदा और मीर के ठीक पहले तक खड़ी बोली में ब्रजभाषा का अत्यधिक मिश्रण था और मीर के समय तक भी ब्रजभाषा के प्रभाव से खड़ी बोली सर्वथा मुक्त नहीं हो सकी थी। इस तरह व्याकरण की दृष्टि से अपभ्रंश के बाद अवधी से लेकर खड़ी बोली तक ही एक भाषा का निरंतर परिमार्जन और परिष्कार प्रतीत होता है। सदियों तक घिसते घिसते प्रत्ययों विभक्तियों परसर्गों उपसर्गों आदि ने आधुनिक परिनिष्ठित रूप धारण किया। इस प्रवाह में कुछ प्रत्यय परसर्ग प्रवाह पतित अथवा अप्रचलित हो गए और कुछ नए आ मिले, फिर भी व्याकरण का ढांचा बहुत कुछ वही रहा। उच्चारण और ध्वनि विकार संबंधी छोटे मोटे स्थानीय भेदों के बावजूद अवधी ब्रजभाषा और खड़ी बोली एक ही। हिंदी के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं, लेकिन यह न भूलना चाहिए कि इन तीनों बोलियों का एक जातीय भाषा के रूप में संगठित होने का कार्य अभी अच्छी तरह पूरा नहीं हुआ है। कारण स्पष्ट है, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल की तरह मध्य देश का जातीय विकास नहीं हुआ, इसीलिए इस क्षेत्र में एक जातीय भाषा का विकास भी यथोचित नहीं हो सका। जिस समय आधुनिक भाषाओं का उदय हो रहा था, उस समय मध्य देश अत्यंत अव्यवस्थित और अशांत था। विदेशी आक्रमणकारियों के कारण राजनीतिक स्थिति बराबर पेज नंबर 93 अस्थिर रही। राजवंशों का परिवर्तन जितना जल्दी इस क्षेत्र में हुआ, उतना गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल में नहीं हुआ। छोटे राजवंशों के शासन क्षेत्रों में विभाजित रहने के कारण समस्त प्रदेश विभिन्न जातीय इकाइयों और बोलियों में बटा रहा। 16वीं सदी के आसपास इस अव्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन हुआ। मुगल बादशाह अकबर महान के शासनकाल में सुदृढ़ केंद्र स्थापित हुआ, विकेंद्रित मध्यदेश केंद्रोन्मुख हुआ। नए धन की भूमि व्यवस्था ने बिखरे हुए गांवों में कुछ एकसूत्रता स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की। सामरिक उपयोग के लिए बड़ी बड़ी छावनियों के रूप में नगर स्थापित हुए। इन छावनियों में परस्पर यातायात की सुविधा होने से वाणिज्य की प्रगति हुई। इस तरह उस मध्ययुग में भी जातीय भावना के लिए पृष्ठभूमि तैयार हुई। एक ओर ये आर्थिक और राजनीतिक आधार निर्मित होते रहे और दूसरी ओर भक्ति आंदोलन के द्वारा संपूर्ण मध्य देश में सांस्कृतिक एकता की लहर फैल रही थी। इन दोहरे प्रयत्नों ने जातीय भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। फलत अवधी और ब्रजभाषा के मिश्रण से एक सामान्य काव्य भाषा का प्रादुर्भाव हुआ और साथ ही नगरों में खड़ी बोली का अभ्युदय दिखाई पड़ा। आगे चलकर अंग्रेजों के आने के साथ रेल, तार, डाक के द्वारा जब जातीय भावना के विकास के लिए और भी सुविधा प्राप्त हुई तो ब्रजभाषा और खड़ी बोली की सम्मिलित भाषा से आधुनिक खड़ी हिंदी का रूप सामने आया। जातीय एकता का ये कार्य नगरों में तो संपन्न हुआ, किंतु उस सतह से नीचे गांवों में दुराव बहुत कुछ बना ही रहा। फलतः जो आधुनिक जातीय भाषा मध्य देश में बनी वह ऊपर ही ऊपर नगर निवासी पढ़े लिखे मध्यवर्ग तक ही सीमित रह गई। उसकी जड़ें गांवों की मिट्टी में न जा सकी। इसी आधारभूत कमजोरी के कारण आज भी इस क्षेत्र की भाषा समस्या उलझी हुई है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर हिंदी बोलियों के उदय की भाषा विषयक अवस्थाओं पर विचार किया जाना चाहिए। हिंदी बोलियों के उदय पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। जब से अपभ्रंश का प्रचुर साहित्य प्राप्त हुआ है, अपभ्रंश से आधुनिक भाषाओं का संबंध जोड़ने और उनका आविर्भाव दिखाने का फैशन सा चल पड़ा है। जहां तक इस दिशा में शोध भावना से प्रयत्न करने की बात है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन पहले से ही एक निश्चित धारणा के अनुसार अपर्याप्त तथ्यों को जब अनुमान के सांचे में ढालने की चेष्टा की जाती है अथवा कुछ अनुमानित अपभ्रंशों की कल्पना की जाती है तो ये कार्य वैज्ञानिक विचार की सीमा से बाहर जा पड़ता है। जब तक उक्ति व्यक्ति प्रकरण वर्णरत्नाकर आदि परवर्ती अपभ्रंश के ग्रंथ प्राप्त नहीं हुए थे तब तक पश्चिमी अपभ्रंश के साहित्य के आधार पर हिंदी बोलियों के उदय की चर्चा करना बहुत कुछ अनुमानित ही था। वस्तुतः अपभ्रंश का जो अधिकांश साहित्य प्रकाशित हुआ है उसमें प्रायः गुजराती और कुछ राजस्थानी के ही आरंभिक पेज नंबर 94 बीज अधिक हैं। पश्चिमी अपभ्रंश की कुछ सामग्री विशेषतः परवर्ती काल की ऐसी अवश्य है जिससे ब्रजभाषा के आविर्भाव का आभास मिल सकता है, जैसे संदेश रासक, प्राकृत पेंगलम आदि। लेकिन सारी सामग्री इतनी परिपाटी विहित और साहित्यिक है कि उससे उस समय की लोक बोलियों का पता लगाना कठिन प्रतीत होता है। इसकी अपेक्षा उक्ति व्यक्ति की भाषा में लोक बोली के अविकृत तत्व कहीं अधिक हैं। अवधि की उत्पत्ति मालूम करने में ये सामग्री जितनी अधिक उपादेय है उतनी विश्वसनीय और समृद्ध सामग्री ब्रजभाषा के लिए अभी तक सुलभ नहीं हो सकी है। खड़ी बोली की प्राचीनतम सामग्री। लेकिन खड़ी बोली के प्राचीनतम रूप पर प्रकाश डालने वाली सामग्री तो सबसे कम है। आमतौर से शौरसेनी अपभ्रंश तथा अवहट में ऐसा कुछ नहीं मिल सका है जिससे खड़ी बोली का सीधा संबंध स्थापित किया जा सके। उद्धरण: दक्षिणी हिंदी नाम से अवश्य ही बहुत सा साहित्य प्राप्त हुआ है जो काफी पुराना है, यहाँ तक कि उसमें से कुछ रचनाएं 13वीं-14वीं सदी ईस्वी की हैं, और जिससे खड़ी बोली के प्राचीनतम रूप पर प्रकाश पड़ता है। 13वीं-14वीं सदी में दक्षिण में जाकर उत्तर की जिस बोली में साहित्य रचा गया उस बोली को परवर्ती युग की अपभ्रंश अथवा अवहट ही समझना चाहिए। रचना करने वालों ने उस बोली को चाहे जो बोली या भाषा ही कहा हो लेकिन उसे परवर्ती अपभ्रंश समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए। फारसी के पंडितों से यहाँ की लोक बोली के लिए अपभ्रंश संज्ञा की उम्मदी नहीं की जा सकी है क्योंकि उसके लिए वह अपभ्रंश न थी। अपभ्रंश तो थी वह संस्कृत के पंडितों के लिए, जो हो यदि अरबी फारसी शब्दों से मिश्रित कीर्तिलता जैसी पुस्तकों की भाषा व्याकरण के कारण अवहट कही जा सकती है तो तथाकथित दक्षिणी हिंदी को भी अवहट क्यों न कहा जाए। डॉक्टर शून्य मौलवी अब्दुल हक ने उर्दू की इब्तिदाई नशा व नुमा से सूफियाए कराम का काम नामक पुस्तक में खड़ी बोली के आरंभ का विस्तृत वर्णन किया है। उसमें उन्होंने शेख फरीदुद्दीन शकरगंजी 1173-1265 का कुछ कलाम उद्धृत किया है। उनमें से एक ये है: तंद होने से जो दिल होता पूख, पेशरु असफिया के होते गूख, रोश सबलत से गर बड़े होत, बोकडवां से न कोई बड़े होत, खाक लाने से गर खुदा पाए, गाय बैला भी वासला हो जाए, गोश गिरी में गर खुदा मिलता। पेज नंबर 95। गोश चोया कोई न वासिल था, इश्क का रमूज न्यारा है, जुज मदद पीर के न चारा है। इस तरह की और भी पंक्तियां उर्दू भाषा और साहित्य के इतिहासकारों ने इतिहास के आदि काल में उद्धृत की हैं। उन विवरणों से पता चलता है कि दक्षिणी के पहले ग्रंथ को ख्वाजा बंदानवाज गैसुदराज मुहम्मद हुसैनी 1318-1422 है और उनकी रचनाओं में भाषा की दृष्टि से मीराजुल आशिकीन काफी महत्वपूर्ण है। यह 19 पन्नों का अरबी फारसी मिश्रित हिंदी गद्य है। इसकी जो प्राचीनतम प्रति प्राप्त हुई है वह भी 1500 की लिखी हुई है, इसलिए इसे 15वीं सदी की बोली की प्रामाणिक सामग्री माना जा सकता है। इसके कुछ नमूने निम्नलिखित हैं: 1. इंसान के पूजने को 5 तन, हर एक तन को 5 दरवाजे हैं, होर 5 दरवान हैं। पहला तन वाजिब उल वजूद मुकाम, इसका शैतानी नफ्स, इसका अम्मारह यानी वाजिब उल वजूद की आंख सो गैर न देखना सो, हिर्ज के कान सो गैर न सुनना सो, हसद तक सो बदबोई न लेना सो, बाज की जबान सो बदगोई न करना सो, पीर तबीयत कामुल होना, नब्ज पहचान दवा लेना। 12. इसमें आपको देखिया सो खालिक में ते खालिक की इजहार किया। 3. मुहम्मद हमें जो दिखलाए त्यों तुम्हें देखो। 4. ए भाई सुनो, जे कोई दूध पीवेगा सो तुम्हारी पैरवी करेगा, शरियत पर दायम अछेगा, पानी पीवेगा सो विश्वास के कतरिया में डूबेगा। 5. जबराइल हजरत कू बोले ए मुहम्मद दुरस्त। 6. ये तीनों झाड़ हर एक मोमिन के तन में है। 7. हदीस व नबी फरमाए है। 8. इसका माना न देख सकेंगे अपने अंखियां सू, मगर देखेंगे मेरे अंखियां सू ओ सूरत साहब की। 13. इसी तरह अमीर खुसरो 1253-1325 की रचनाओं से भी उभरती हुई खड़ी बोली के नमूने लिए जा सकते हैं। जहां तक खुसरो की पहेलियों का संबंध है, उनकी भाषा को प्रायः लोग आधुनिकता के रंग रंगी मानते हैं। लेकिन खुसरो का खालिक बारी, जो एक पद्यबद्ध शब्द कोश है और फारसी शब्दों को समझाने के लिए लिखा गया है, कुछ विश्वसनीय माना जा सकता है। खालिक बारी की भाषा। एक, डा शून्य बाबू राम सक्सेना, दखिनी हिंदी, प्री 031 पर उद्धृत, 1952 02। हामिद हसन कादरी, दास्ताने तारीखे उर्दू। तीन, डॉक्टर शून्य रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, द्वितीय संस्करण, प्री 857 पर उद्धृत, पेज नंबर 96। व्याकरण की दृष्टि से आरंभिक खड़ी बोली ही है। कुछ वाक्यों से इस कथन की सच्चाई देखी जा सकती है। एक, इस्म असद खुद का नूर दो, दोष कल रात जो गई, वो शब आज रात जो भई। तीन, तर अबकफतम में तुझ कहिया, कजा बमा मुझी कत रहिया। चार, अस्प मीरान हिंदवी घोड़ा चलाओ। पाँच, खाक धूल जो बाद उड़ानी। छह, दरिया बाहर समुंदर कहिए जोकी नहीं था। सात, चांद बटा रात का ताजी जबान। आठ, हुई जिंदह जानियो तुक जीवता। नाइन, बेदार बदां की जागता है, हम खफ्तह बदां की सोवता है। दस, शरम लाज पोशीदा ढांकना, कार है काज ख्वास्तन मांगना। ग्यारह, है जनूब दखिन का ओर, हम शुमाल उत्तर का छोर। तथाकथित दखिनी हिंदी के इन नमूनों को देखते हुए उसकी व्याकरण संबंधी विशेषताओं का भी उल्लेख आवश्यक है। उद्धरण चिन्ह। एक, सभी कारकों में बहुवचन में प्रायः अकारांत शब्दों के विकारी रूप अकारांत होते हैं तथा इकारांत संज्ञाएं याकारांत हो जाती हैं, जैसे बाता के बंदा, दोस्तों ने बोले हैं, औरता खातिर, अपनिया ऐतिया मूरतिया, आँखियाँ सो सीपियाँ समा। दो, कर्तृवाचक पार्सग ने का प्रचलन हो गया था, लेकिन आधुनिक खड़ी बोली की भांति निश्चित न था कि भूतकालिक सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा और अकर्मक के कर्ता के साथ न होगा। जैसे दोस्ता ने बोले हैं और बादशाह शराब पिया। इस तरह कर्तरी और कर्मणी दोनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। तीन, कर्मवाचक पार्सग को मिलता अवश्य है, लेकिन अधिकांशतः उसका सानुनासिक रूप को ही प्रचलित था, जैसे किसी को नैन मिले। चार, करण अपादान वाचक परसर्गों में से सोनते सेती आदि के बीच से के प्रयोग की ओर उन्मुखता तो दिखाई पड़ती है, परंतु से की अपेक्षा सो की अधिकता है, जैसे सब सो जिस सो। एक, दखिनी हिंदी के व्याकरण की रूपरेखा अधिकांशतः डा शून्य सक्सेना की दखिनी हिंदी पर आधारित है, पेज नंबर 97। पाँच, संप्रदान के लिए तई आठ तर्ण का ही प्रयोग प्रायः मिलता है, जैसे समुंदर के तई। लेकिन एक नया परसग खातिर भी लोक व्यवहार में आ गया था, जैसे अपनी खातिर को। छह, संबंध कारक के गर्सग का की अपेक्षा अवधि बोली के केरा केरी केरे रूप रूप अधिक प्रचलित थे, जैसे मोहब्बत केरा माए जो पीता है, अजब तेरे कुदरत केरे काम है। वैसे उनन के मोचियां जैसे रूप भी यत्र तत्र मिलते हैं। सात, अधिकरण का परसग में स्थिर हो चुका था, जैसे इन दोनों में। आठ, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया में क्षत्री वाले कृदंत तद्भव रूप खूब प्रचलित हो गए थे, जैसे होता होती होते आदि। लेकिन केवल त वाले प्राचीन अवशेष भी रह गए थे, जैसे देखत आवत। नाइन, भूतकालिक क्रिया के रूप अपभ्रंश के निष्ठा वाले रूपों के ही विकसित रूप थे, जैसे दौड़ाए पैदा किया नेकी की कबूल किए हैं आदि। लेकिन कहिया सया जानिया बोलिया जैसे रूप भी मिलते हैं। साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्म वाच्य में भूतकालिक क्रिया को कर्म के लिंग वचन के अनुरूप बदलने की प्रवृत्ति तब तक स्थिर नहीं हुई थी, जैसे इस छिनाल ने मुझे मारी, जिसे खुदा दिया सफाई उसे आई, काम बहुत खास किया हूँ। 10. भविष्यत काल की क्रिया के रूप गा गी अंत वाले होने लगे थे, जैसे दिखलाएगा, जाएगा, सकेगा। यद्यपि स वाले प्राचीन अवशेष भी रह गए थे, जैसे जासी आसी, जो मारवाड़ी में अब भी होते हैं। 11. पूर्वकालिक क्रिया के रूप ल्यप यह जोड़कर वाले अधिक मिलते हैं, जैसे आयकर होएकर। तात्पर्य ये कि आकर होकर जैसे आधुनिक रूप प्रचलन में नहीं आए थे, इसी तरह कर जोड़कर इक्वल्स करके जैसे रूप का भी प्रचलन उतना नहीं हुआ था। प्रायः तस्लीम कर कर जैसे रूप ही अधिक मिलते हैं। 12. सहायक क्रियाओं में है हो हूँ था थे थी होगा होगे होंगी रूप प्रचलित तो हो चुके थे, लेकिन इनके साथ ही अच अथ के प्राचीन अवशेष और हेंगी हेंगा जैसे रूप भी मिलते हैं। 13. प्रेरणार्थक क्रिया में यदि एक ओर दिखलाता जैसे आधुनिक रूप मिलते हैं, तो दूसरी ओर कहवाता जैसे प्राचीन रूप भी दिखाई पड़ते हैं। पेज नंबर 98. 14. सक धातु के साथ संयुक्त क्रिया बनाते समय जहां आजकल पूर्वकालिक क्रिया का रूप इस्तेमाल किया जाता है, वहां उस समय क्रियार्थक संज्ञा के प्रयोग की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, जैसे कर सके की जगह करने सके। इस प्रकार तथाकथित दक्षिणी हिंदी की भाषा संबंधी प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि उसमें अवधि ब्रजभाषा और खड़ी बोली तथा राजस्थानी पंजाबी आदि दूसरी अनेक बोलियों का मिश्रण है। निःसंदेह उस भाषा की प्रवृत्ति मुख्यतः खड़ी बोली की ओर उन्मुख है, लेकिन उससे खड़ी बोली के आरंभिक अस्थिर तथा अव्यवस्थित रूप का ही पता चलता है। हिंदी की यह स्थिति लगभग 16वीं सदी ईस्वी के आस पास की है। इस तरह परवर्ती अपभ्रंश में अलग अलग हिंदी की विविध बोलियों के बीच दिग्दर्शन कर चुकने के बाद सामान्य रूप से अपभ्रंश और हिंदी के संबंध पर विचार किया जा सकता है।